हरे हरे
राम राम
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से स्कान पंजाबी बाग के प्रेरणा से आहूजा परिवार के द्वारा नरेंद्र जी और पुष्पा आहूजा उनके सुपुत्र और सारे परिवार ने मिलकर 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के वाणी के रूप में अवतार श्रीमद् भागवत का सत्संग रखा था। आज 7वां दिन पूर्णाहुति का दिन है। आप सब श्रद्धालु उत्साह के साथ पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आहूजा परिवार और इस्कान पंजाबी बाप का और गोपी प्रिय माता जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसा सुंदर 7 दिन का सत्संग का आयोजन आप और हम सबको श्रवण मनन का शुभ अवसर दिया। कल हमने भगवान श्री कृष्ण की 3 साल 4 महीने तक गोकुल के अंदर बाल लीलाएं, कुमार अवस्था की लीलाएं, 5 साल तक कुमार अवस्था कहते हैं, लेकिन भगवान 3.5 साल के होते हैं तो 5 साल जितने लगते हैं और फिर 5 से 10 साल तक आयु को पौंगल अवस्था कहते हैं। उसमें भगवान की सखाओं के संग लीलाएं वृंदावन में होती हैं। जो सखा प्रेम के भक्त हैं उनके लिए गौचारण लीला और भगवान बछड़ों को चारने की वत्स चार के चारणों के रूप में सुंदर लीलाएं करते हैं। और फिर किशोर अवस्था 10 से 15 साल की अवस्था को कहते हैं किशोर अवस्था, और भगवान तो 11 साल तक ही इस अवस्था पे पहुंच जाते हैं। उस वक्त भगवान की मधुर लीलाएं जो अपने संग में गोलोक धाम से राधा रानी और अन्य गोपियों को लाते हैं, उनके संग प्रेम का आदान प्रदान करके और मधुर रस का विहार रास का विहार करते हैं। तो केवल 11 वर्ष तक ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में, 84 कोस गोकुल वृंदावन नंदगांव आदि में रहते हैं और 11 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण वसुदेव नंदन वसुदेव कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए कंस का और अन्य असुरों का उद्धार करने के लिए मथुरा में आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन जो गोलोक अधिपति स्वयं भगवान है वो अप्रकट रूप में ब्रज में ही लीलाएं अपने नित्य करते हैं। जो अप्रकट नित्य लीलाएं हैं उनमें रहते हैं। कुछ 17-18 साल तक भगवान मथुरा में रहने के बाद शेष 90 साल तक द्वारका में लीला करके 125 या 29 साल तक इस धरती के ऊपर द्वापर युग के अंत में अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने मधुर लीलाएं की जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में व्यास देव ने रचा और सुखदेव महाराज ने इसका वर्णन किया है, जो आगे चलकर सूत गोस्वामी के मुख से नैम शरण्या में स्नक आदि ऋषियों को कहा गया जहां से हमने कथा को आरंभ किया था। तो भगवान की वत्स चारण की लीलाओं में कल हमने ब्रह्मा विमोहन लीला का वर्णन सुना। ब्रह्मा जी को विमोहन किया, क्यों किया भगवान ने? भगवान ने कहा सब मुझे कहते हैं माखन चोर है, मैं तो छोटा बच्चा हूं, माखन चराता हूं, दही चुराता हूं, दूध चुराता हूं, वो भी ग्वाल वालों के संग जाके चुराता हूं, मेरे को ही चोर कहते हैं, मैं ऐसी कोई लीला करूं जिससे ब्रह्मा जो 4 वेदों को जानता है वो अगर बछड़े चुरा के चला जाए तो मेरा नाम तो छोटा चोर हो जाएगा ना, बड़ा चोर ब्रह्मा बन जाएगा। तो ऐसी कोई बड़ी अद्भुत लीला करनी चाहिए जिसमें ब्रह्मा जैसा पहला 4 वेदों को जानने वाला अगर चोरी कर ले तो फिर भगवान को कौन चोर कहेगा। तो भगवान की इस अद्भुत लीला में ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए और ग्वाल वाल भी चुरा लिए और भगवान 1 वर्ष तक सब बछड़ों के रूप में और ग्वाल वालों के रूप में ब्रज में लीला करते रहे, जिससे उन्होंने सारे गोपियों के मनोरथ पूरा किया कि सबके गोद में बैठे और उन सबकी इच्छा थी कि कृष्ण हमारे गोद में बैठे तो बैठे। सब गायों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारा दूध पिए, उनके हृदय में वात्सल्य भाव था, उनकी इच्छा पूरी की। और 5 वर्ष की छोटी कुमारी कन्याएं जो थी उनको सांडल ऋषि ने कहा कि जो इनका विवाह कर देगा गोपों के साथ तो ये सदा सुहागन रहेंगी। उनका विवाह भी उन्हीं ग्वाल बालों से हुआ जो श्री कृष्ण ग्वाल बाल बने हुए थे। तो इस लीला को कल हमने श्रवण किया और इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण गौपाल हो गए, वत्सपाल का काम पूरा हो गया, बड़े हो गए। एक बकासुर को बीच में मारा, पूतना का भाई बगले के रूप में आया। ये जितने भी असुर भगवान श्री कृष्ण की लीला में आए हैं ये सारे हमारे हृदय में कोई दाव दोष के रूप में रहते हैं और भगवान उसका शोधन करके पवित्र करते हैं। जैसे पूतना है, झूठ मूठ का गुरु है, अविद्या है, कहती है दूध पिलाती हूं और पिलाती है विष। गुरु का काम है भगवान से मिलाए, लेकिन वो अपनी पूजा में लगा दे और विषयों में अटका दे तो फिर वो पूतना जैसा हो गया। ऐसे तृणावर्त आया था, वो काम है, वो एकदम आता है आदमी को उठा के ऊपर चला जाता है और थोड़ी देर के लिए आदमी सब कुछ भूल जाता है, तो उसका भगवान ने उद्धार किया। तो ऐसे एक कालिया सर्प जमुना के अंदर आके बैठ गया था और जमुना से जुड़ा हुआ एक पानी का बहुत बड़ा हर्द था, मतलब एक जमुना से जुड़ा हुआ बड़ा तालाब था, उसके अंदर कालिया रहता था और विष इतना विषीला था कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी वहां से मुरझा के नीचे गिर जाते थे। घास सारा विषीला हो गया था, गर्मी के दिन थे, भगवान की गैया पानी पीने के लिए प्यासी उस कालिया के हर्द में चली गई और गैया सब मूर्छित हो गई। ग्वाल वाल भी बहुत प्यासे थे, पानी पिया मूर्छित हो गए। भगवान ने देखा अब इस द्वेषी, द्वेष का प्रतीक है कालिया, ईर्ष्या द्वेष, इसका अब निवारण करना चाहिए। तो भगवान ने कमर कस लिया और जमुना में कूद गए। पहले तो गैयों के ऊपर अमृत की दृष्टि डाली, गैया बिचारी उठ गई, ग्वाल बालों के ऊपर अमृत दृष्टि डाली, ग्वाल बाल जो मूर्छित हो गए वो नींद से जैसे उठे हैं ऐसे उठ गए। और फिर उनको भगवान ने कहा, वैसे कथा में कथाकार इस तरीके से भाव को प्रकट करते हैं कि फिर ग्वाल बाल खेलने लगे और श्रीधामा का गेंद चला गया जमुना में। श्रीधामा माँ का गेंद जमुना में चला गया, उसने बोला मेरे गेंद ला के दो। भगवान ने कहा मैं गेंद लेके आता हूं, जमुना के अंदर से मैं गेंद को निकालने जा रहा हूं। गेंद के व्याज से, गेंद के बहाने से भगवान जमुना में कूद गए और कालिया सोया हुआ था, भगवान ने जाके उसको लात मारी। कालिया ने कृष्ण को देखा, उसके सुंदर रूप को देखा तो आकर्षित हो गया, क्यों मेरे को उठा रहे हो, अब क्यों अपने आप को मृत्यु के मुंह में डाल रहे हो, जाओ जाओ जाओ, तुम बड़े अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे को नहीं डसना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा नहीं, मैं आया हूं तुमसे दो हाथ करने के लिए। तो कालिया थुत्कारता हुआ ऊपर उठा और उसने अपने बलों के अंदर कृष्ण को लपेट लिया और कृष्ण उसके बलों में पड़ा हुआ है। आज बलराम जी साथ नहीं आए थे, उनका जन्म नक्षत्र था। ग्वाल बालों ने जब कृष्ण को कालिया के फनों में ऐसे फंसा हुआ देखा तो सबने ये समाचार दे दिया, जाके ग्वाल वालों को, गोपों को, यशोदा मैया वहां से दौड़ती आई, नंद बाबा, बलराम जी सब। वो तो सारे जमुना में कूदना चाहते थे, कृष्ण हमारा प्राण है और वो अगर इस अवस्था में है तो हम जी नहीं सकते। बलराम जी ने किसी को जाने की जरूरत नहीं है, कोई घबराए नहीं, कृष्ण के वैभव को और पराक्रम को, कृष्ण की वीरता को मैं जानता हूं, ये क्या करेगा कालिया कृष्ण का, आप रुक जाओ रुक जाओ। कृष्ण ने देखा कि सारे गोप गोपियां बड़े संकट में हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को थोड़ा सा ऐसे चौड़ा किया और कालिए को जरा कसने में परेशानी हुई, उसका सांस रुकने लगा तो उसने कृष्ण को छोड़ दिया और कृष्ण ने एकदम कूद कर कालिया के फन के ऊपर चढ़ गए। कालिया के 99 बहुत बड़े फन थे और छोटे छोटे तो बहुत सारे फन थे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के फनों के ऊपर नृत्य शुरू किया, था थई था, 1 2 3 4। आकाश में देवताओं ने कहा इतना सुंदर नृत्य हो रहा है और हम चुप करके बैठे हैं, कौन बाजा बजाएगा, कौन मृदंग बजाएगा, कौन करताल बजाएगा। सब ने ढोल बजाना शुरू किया और भगवान ने ऐसा नृत्य किया और मुस्कुराकर गोपियों की ओर देखा और कहा कि देखो कालिया के फनों के ऊपर नृत्य करने में मुझे आनंद कितना आता है, तो फिर सीधी सी धरती के ऊपर नृत्य करके आप सबको मैं सुखी करूंगा। और कान्हैया का जब सारा, पहले तो खून निकला, पहले विष सारा निकल गया, फिर खून निकल गया। अब जब ईर्ष्या हृदय से निकल गई तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिये को लात मार ही रहे थे तो एक थोड़ा सा दीप छोटा सा बना दिया, उसके ऊपर खड़े हो गए। तब तक नाग की पत्नियां बाहर प्रकट होके हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करने लगी। हमारा पति द्वेषी था, ईर्ष्यालु था, विशीला था, कटु वचन बोलने वाला था। हम चाहती थी कि आपसे द्वेष करता है इस मर जाए तो अच्छा है, लेकिन आज आपके चरणों के घात से इसका विष भी निकल गया, अब इस ये शुद्ध हो गया है। हम तो आश्चर्य में है कि जो आपके चरण कमल योगियों को ध्यान में थोड़ी देर के लिए रुकते नहीं है उनके हृदय में, वो इस हमारे पति के सर के ऊपर इतने सौभाग्य से आपने धारण किए हैं, अब हम समझते हैं कि आप इसको क्षमा कर दो, आप इसको प्राण दान दे दो। भगवान मुस्कुराए, नाग पत्नियों की प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए। और फिर भगवान ने कालिये को आजाद किया और कालिये ने एक श्लोक में भगवान को कहा, भगवान आपने ही विशीला बनाया, आपने ही ईर्ष्यालु बनाया, हम तो आपकी सृष्टि हैं, हमारा जो स्वभाव है उससे हम तो रह नहीं सकते, आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर और मेरा उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा यहां से चले जाओ, जहां से आए थे वहां चले जाओ। कहां से आए थे? रमणीक द्वीप से आए थे, जिसको आजकल फिजी कहते हैं, मनीला और फिजी। रमणीक द्वीप से यहां क्यों आए थे परीक्षित महाराज ने पूछा। बोला गरुड़ को सब सांप उसका भोजन देते थे, इसकी जब बारी आई तो इसने दिया नहीं, तो गरुड़ ने इसको मारने के लिए किया, तो गरुड़ तो ये भाग के यहां जमुना में आया। बोला यहां क्यों आया? बोला यहां इसलिए आया कि शोबरी ऋषि ने गरुड़ को शराप दिया था। वो एक दिन मछली जमुना में पकड़ रहा था तो शोबरी ने कहा कि तुमने अगर किसी मछली को यहां पकड़ा या मारा तो तेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए गरुड़ जमुना में आ नहीं सकता था, इसलिए कालिया ने यहां सुरक्षित अपने आप को जमुना में बिठा दिया था। भगवान ने कहा वापस वहां जाओ। बोला गरुड़ मारेगा? बोला अब तुम्हारे मस्तक के ऊपर मेरे चरणों का ऐसा ठप्पा लगा हुआ है, गरुड़ जी अब तुम्हारे को प्रणाम करेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तुम यहां से अपने पत्नियों के साथ परिवार के साथ चला जाओ। तो नाग सांप भी समझ लो, लेकिन नाग नागालैंड में रहने वाले लोग जो होते हैं इस प्रकार के मानवों को भी नाग कहते हैं, और यहां आप में भी कोई नागपाल होगा जो नागों को पालता होगा। फिर ग्वाल बाल रात को कहा कि अब देर हो गई है, यहीं रुकना चाहिए, रात को वहीं सो गए। सुबह सवेले आग लगी, ये आग क्योंकि सारा घास विशीला था तो देवताओं ने कहा सब कुछ सुबह गाय चरे ना, इसलिए मरे ना, इसलिए घास को जला दिया। हाहाकार मच गई, कन्हैया आग लग गई, कन्हैया आग लगी। कन्हैया का चुप करो, कोई बात नहीं, आप लोग आंखें बंद कर लो। सबने आंखें बंद कर ली, भगवान ने आग को पी लिया। भगवान आग भगवान के मुख से निकलती है, तो भगवान ने वापस मुख में आग को धारण कर लिया। ग्वाल बाल यहां से चले गए, बड़े बड़े गोप तो घर चले गए, ये गैया को लेके ग्वाल बाल चराने के लिए चले गए। ग्वाल बाल जब गैया चराने लगे तो सब ग्वाल बाल ने कहा आज तो हम भूखे हैं, कहां से भोजन करेंगे। भगवान ने कहा ये सामने जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं ना, चतुर्वेदी ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मणियों को चतुर्वेदी कहते हैं। चतुर्वेदी ब्राह्मण का मतलब चारों वेदों को जानने वाला, और ये ब्राह्मण भोजन करने में बड़े होशियार होते हैं। एक चतुर्वेदी ब्राह्मण का विवाह हो गया, शादी हो गई नौजवान की, तो बहू घर में आई, ससुर जा रहा था किसी भोजन करने, कहीं भंडारा था, तो सास कहने लगी बेटी तेरा ससुर भोजन करने जा रहा है आज, खटिया बिछा के रखना, वापस आएगा तो सो जाएगा क्योंकि खा के ज्यादा आएगा। तो बेचारी बहू रोने लगी जोर शोर से, किस घर में आ गई, मेरा क्या भाग ऐसा अच्छा नहीं था। बोला क्यों, क्या बात है? बोला ससुर जी खा के घर आके सोएंगे, हमारे पिता खाने जाते हैं खटिया साथ ले जाते हैं, उधर ही खा के सो जाते हैं, इतना सा चलेगा कैसे? चलना नहीं है, वो तो खाना है और सोना है। वो बीमार हो गया, चतुर्वेदी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला तुम्हारे को दर्द है तो एक गोली खाओ। अरे माँ, कहते डॉक्टर इतनी जगह होती तो लड्डू नहीं खाता, गोली की जगह कहाँ से आ गई, इधर कोई जगह नहीं है यहाँ। तो ये बड़े चतुर्वेदी भोजन का, बड़े भोजन के थाल बनाए थे और सुहा कर रहे थे। भगवान ने कहा जाओ इनको बोलो कि बलराम जी कृष्ण के साथ आए हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, और सब ग्वाल बाल भूखे हैं, तुम्हारे यज्ञ के अंदर इतना सारी भोजन सामग्री है, प्रसाद बांटना ही है तो हमको दे दो। तो ब्राह्मणों ने ना हाँ कहा ना ना कहा, और दिया भी नहीं। बेचारे भागते हुए वापस आए, बोला कृष्ण भूखे, उधर उधर प्रसाद को देखा भूख बढ़ भी गई, दिया भी कुछ नहीं। प्रसाद स्वादिष्ट हो और बनाने के लिए अच्छा सा पदार्थ तैयार किया हो ना, तो प्रसाद बैठने नहीं देता, खुशबू उसकी बहुत परेशान करती। आप कभी वृंदावन घूमने जाओ और बांके बिहारी के दर्शन के लिए आप गली से ऊपर चढ़ो तो बाहर आलू की टिकिया बनाने वाला घी के अंदर थोड़ी आलू डाल के ऐसे छोंक लगाएगा, छू और छू आपको देखेगा तब करेगा, और खुशबू आपके हाँ नाक में गई नहीं। बांके बिहारी को ठोर बाद में जाते हैं, पहले दो टिकिया खा लो, क्योंकि ये स्वाद जो उसका है वो एकदम आकर्षित कर लेता है, प्रसाद का स्वाद और उसकी खुशबू जो है। ये तो बेचारे बड़े दुखी होके वापस आए। कृष्ण अब क्या करें? बोला इनकी पत्नियों ने बहुत छप्पन भोग बनाए हैं, उनको जाके मेरे नाम बोला, कृष्ण और बलराम जी के साथ आए हैं और भोजन के लिए कहा है कि भूख बहुत लगी है, आज सीधे हम जमुना के तट से आ गए हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने सर के ऊपर थाल उठाए कि ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा, ये सारे यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और साक्षात भगवान ने अगर हमसे भोजन मांगा है तो और कब देंगे, ऐसा मौका कब मिलेगा। वो भगवान के पास जाके सारा भोगल भोजन परोस दिया, ग्वाल बाल खा रहे थे। भगवान एक ग्वाल एक अपने सखा के कंधे के ऊपर हाथ रख के ऐसे मुरली पकड़ के खड़े थे, इतना सुंदर उनका बैठने का ये अंदाज था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस रूप की झांकी देखकर आनंद से विभोर होके हम समाधि में चले जाते थे। और ब्राह्मण पत्नियों प्रार्थना कर रही है, श्री कृष्ण अब हमको आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप ब्राह्मण हो, हमारे लिए पूजन्य हो, हम गोप जाति के हैं। बोला हम वापस जाएंगे, हमारे पति हमारे ऊपर नाराज तो नहीं होंगे? बोला आपके पति आपकी पूजा करेंगे, आप वापस जाइए। और जैसे ब्राह्मण पत्नियां वापस आती हैं तो ब्राह्मण कहते हैं धिक्कार है हमको, हम इतना वेद पढ़ा, इतना पाठ पढ़ा, इतना यज्ञ किया, इतने मंत्र पढ़े, लेकिन जिसके लिए मंत्र पढ़े थे वही हमारे से भोजन मांग रहा था, उसको हम भोजन दिया नहीं। और धन्य है आप, अनपढ़ हो, स्त्री हो, गुरु के आश्रम में नहीं गई हो, मंत्र उच्चारण नहीं करना आता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न तो आपने कर लिया, आप हमारे लिए पूजनीय हो गई। आज ब्राह्मण अनुकूल हो गए। कृष्ण बलराम जी को कहते हैं कि बलराम जी देखो ये पेड़ कितने परोपकार करने वाले हैं, परोपकारी पेड़ कितने हैं, छाया देते हैं गर्मी में, सर्दी में लकड़ी देते हैं जलाओ आग और हाथ गर्म कर लो, मौसम के फूल देते हैं, फल देते हैं, काटो तो भी काटने वाले कुल्हाड़े के अंदर भी लकड़ी देते हैं, कितने परोपकारी हैं ये इन ब्राह्मणों से अच्छे हैं। भगवान ने कहा ये पेड़ इन ब्राह्मणों से अच्छे हैं, कितना बड़ा परोपकार करते हैं। और यहां भगवान ने ब्राह्मणों को जो वेद के नियमों से किसी बात का निर्णय बताते हैं उनको आज भगवान ने बड़ा प्रसन्न किया, अनुकूल किया, ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा की। इस बीच में एक दिन ग्वाल बालों ने कहा कि यहां बड़ा अच्छा ताल वन है, ताल का बड़ा बने ताल का वृक्ष है, ताल के फल पके हुए, खुशबू बहुत आती है। तो भगवान ने कहा खाते क्यों, चलो खाते हैं। बोला खाएंगे कैसे, वहां एक धेनु का सुर नाम का असुर रहता है, गधे के रूप में रहता है, किसी को पके हुए फल खाने नहीं देता। भगवान ने कहा चलो आज चलते हैं। ग्वाल वालों को लेकर भगवान तालवन में गए। 12 वन है वृंदावन में, उनमें से एक वृंदावन में, 11 और वन है, 5 जमुना जी के एक तट पे और 7 दूसरे तट पे, इसको वन कहते हैं जहां भगवान गैया चराते थे, और बाकी उपवन है जहां छोटे गोपों के घर हुआ करते थे, छोटे उपवन है और बड़े महावन है। तो 12 वनों में एक ये वन भी है जिसको कहते हैं ताल वन, काम्य वन, ताल वन, मधु वन, ये सब वनों के नाम है। इन सब वनों में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान की लीला के बहुत सुंदर स्थान है। सो भगवान जब वहां गए और पेड़ों को हिलाया, पका हुआ फल नीचे गिरा, तब तक गधा हिंको हिंकता हिंकता आया, और गधे ने आकर बड़ा उधर उधम मचाया। आज बलराम जी ने धेनुकासुर को पांव पिछले से पकड़ा और ऐसे घुमाया, बड़ी लातें मारने का प्रयास किया, लेकिन उसको एक पेड़ के ऊपर दे मारा और उसके प्राण निकल गए। कृष्ण ने धेनुकासुर को नहीं मारा क्योंकि ये असुर बलि महाराज के कुल में था, और भगवान ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि तुम्हारे 21 कुलों में किसी का मैं वध नहीं करूंगा। तो भगवान ने बलराम जी ने मारा। बोले ये धेनु का सुर किसका प्रतीक है? बोले धेनु का सुर अच्छे पके हुए फल तो खाना नहीं देता, किसी खाने नहीं देता है, जब तैयार माल पड़ा है तब खाने नहीं देता है, और जब माल सड़ जाता है तब बाहर फेंक देता है, कोई भी जाके खाए। बोला ये काला बाजार करने वाले पके हुए फल को कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, मौसम का किसी को खाने नहीं देते, और मौसम पूरी हो जाए तब ज्यादा कीमत में वो पुराना फल जो है उसको निकाल के सबको खिला देते हैं, ये धेनुकासुर की वृत्ति है। आज पका हुआ फल तो हमने देखा ही नहीं है, पेड़ में पका हुआ फल खाने के दिन खत्म हो गए, अब तो कच्चा फल उतार के छुपा के रख देते हैं, जब चाहे उतना चाहे पका के आपको देते हैं, वो असली पका हुआ तो होता नहीं है, वो तो सब केमिकल का पका हुआ होता है। भगवान का पका हुआ एक ही भोजन फल था, वो भी आजकल लोग बीच में खत्म कर देते हैं। अब ब्राह्मण अनुकूल हो गए, बरसात की मौसम आई, उस बरसात की मौसम का इतना सुंदर वर्णन है कि प्रभुपाद जी ने तो एक किताब बहुत सुंदर लिखा था इस्कान बनाने से पहले, उस पुस्तक के अंदर कुछ बातें बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। बरसात की मौसम में जैसे आकाश में बादल आ जाए तो मोर बड़ा नृत्य करता है आनंद में मगन होकर। क्यों नृत्य करता है? केवल अब गर्मी चली जाएगी, अब बरसात आएगी, शीतलता हो जाएगी, हरा भरा सारा देश हो जाएगा। ऐसे ही लिखा है नीचे, ऐसे ही जैसे बरसात के बादल को देखकर मोर आनंदित होता है, ऐसे सदग्रस्ती के घर में कोई साधु आता है तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है अब हमारा दुख ताप संताप चला जाएगा, हरि कथा सुनने को मिलेगी और हरि कीर्तन होगा। वैसे भी साधु को, साधु की उपमा बादल से दी जाती है। साधु को बादल से क्यों उपमा दी जाती है? बोला सागर तो है, वेद सागर है, लेकिन सागर का पानी कोई पी सकता है? समुद्र का पानी कोई पी सकता है? खेती में काम आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। ऐसे शास्त्र तो समुद्र के समान है, वो कोई उसमें से अपने काम का प्यास भी बुझा नहीं सकता है, खेती भी कर नहीं सकता है, लेकिन उसी समुद्र के पानी को सूर्य के तपत से जब बादल बनाया जाता है तो वो पानी मीठा हो जाता है। वो जब पानी बरसता है तो पीने के काम भी आता है, वो पानी जब बरसता है तो खेती भी होती है। तो बादल का पानी होता तो समुद्र का है, लेकिन मीठा तो वो कर देता है, समुद्र का पानी तो काम आता नहीं है। ऐसे शास्त्रों का सार साधु तपस्या करके मीठा करके सुनने वालों को संतुष्ट कर देते हैं और उनके ताप को मिटा के शीतल कर देते हैं, इसलिए साधु को बादल से तुलना दी जाती है। और बादल किसी से भेदभाव नहीं करता है, वो जब वर्षा करता है तो हरी जमीन पे भी करता है और पहाड़ के ऊपर भी करता है और समुन्दर के ऊपर भी करता है। किसी ने कहा ये बादल इतना मूर्ख है, समुद्र से पानी लेके समुद्र के ऊपर क्यों वर्षा करता है? समुद्र को इससे क्या लाभ होगा? तो महात्मा माया ने कहा एक सिप्पी रहती है समुद्र में, एक सिप्पी रहती है, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद हो जाए तो उसके पेट में मोती बन जाता है, तो ये बरसात वहां मोती बनाने का काम करता है। तो ये बरसात जहां भी देता है बादल बिना भेदभाव के देता है। ऐसे साधु जब सत्संग करते हैं तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई चोर भी आते हैं, कोई बदमाश भी आते हैं, सत्संग में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। हनुमान के बंदर देखे, कुछ अंग्रेज कलंदर देखे, दया और धर्म के मंदिर देखे, कुछ पापी उनके अंदर देखे। लोग भगवान के मंदिर में कुछ पैसा चढ़ाने आते हैं और कुछ जूता चुरा उठा चुराने भी आते हैं। और मंदिर में जूता अगर आप अच्छा पहन के जाओगे, बहुत बड़ा कीमती, जैसे आजकल के जूते की कीमत 2000 से कम तो है नहीं, हाँ जूठे का सच है, ऐसा जूता बाहर रख के मंदिर में भगवान को प्रार्थना करो, तुम्हें वो माता इतना कहने के बाद जूता याद आएगा, तुम्हें वो पिता कहेंगे तब तो ध्यान जूते में चला जाएगा। तो ये कहने का है कि जूता सादा हो मंदिर में पहनना, ताकि न कोई उठाए, जैसे है वहीं पड़ा रहे। और अच्छा जूता होगा तो बड़ी चिंता तो मन उधर लगा रहेगा जूते में, और कथा में मन लगेगा नहीं, क्योंकि ये भी लोग हैं जो इस काम के लिए भी आते हैं सत्संग में, और इस भाव से आते हैं वो भी अपनी इच्छा पूरी करके जाते हैं, क्योंकि हम सावधान नहीं रहते। तो सावधान हमको रहना चाहिए, हमको दिखता है यहाँ से कौन क्या कर रहा है, लेकिन अब कर्मों का फल तो भगवान देने वाला है, हमारा काम तो नहीं है ये, जिसको देना है उसको देगा जैसे देना हो। ऐसे एक बार भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त था, गोपाल दास नाम था, और गोपाल का भक्त था, कहता है भगवान आप हमेशा यहाँ खड़े रहते हैं मंदिर में, भगवान हमेशा खड़े रहते हैं, जाओ थोड़ा खेल के आओ, गैया चरा के आओ, वन से घूम के आओ। तो बोला इधर कौन, मंदिर में कौन बैठेगा? बोला मैं बैठता हूँ, मैं खड़ा हो जाऊंगा, आपका सारा वेशभूषा पहन के मैं खड़ा हो जाऊंगा, ऐसे हम ड्रामा करते हैं तो हम बनते ही हैं। बोला फिर एक शर्त से मेरी जगह पे खड़ा हो ना, बोलना बिल्कुल मत। बोला ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब कन्हैया घूमने चला गया और ये भक्त कन्हैये का और मुरली बुरली पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया। वहां एक आदमी आया, बड़ा सूटेड बूटेड थ्री पीस पहना हुआ, हाथ में ब्रीफ केस उठाया हुआ अंदर आया और पांच पांच से के नोट हुंडी में डाले, जो वहां प्रणामी रखी होती है। प्रणामी मैं इसलिए कहता हूं कि वो दान पात्र नहीं है, भगवान लक्ष्मीपति है, भिखारी नहीं है, वहां प्रणाम करके कुछ भेंट चढ़ानी होती है। तो उसके बाद उसने कहा भगवान मैं आपका भक्त हूं, पहले आपने मेरा काम किया, अब एक ठीका लेने जा रहा हूं, टेंडर मैंने भर दिया है, मेरा काम हो जाएगा फिर मैं और आपकी सेवा करूंगा। ऐसे कह के और जल्दी में गया और बाकी पैसों का पूरे का पूरा थैला उधर ही रह गया। इसने देखा गोपाल खड़ा था, भगवान तो था नहीं, पहले बोला बोलू फिर बोला नहीं नहीं कैसे, भगवान ने कहा चुप रहना, ये चुप रहा। तब तक एक दूसरा भक्त आया बहुत सादा, बोला भगवान मैं आपका भक्त हूं, मुझे आपको 56 भोग लगाने की इच्छा है लेकिन पैसा नहीं, घर में कन्या बड़ी हो गई है उसका विवाह करना है, धन नहीं, भंडारा करना है, साधुओं की सेवा करनी है, कुछ कृपा करो। ऐसे प्रार्थना करके आंखें खोले तो सामने थैला पैसों को, बोले भगवान तत्काल आपने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। उसने थैला उठाया, ये देख रहा है ऊपर, अरे उसका थैला ये ले जा रहा है, लेकिन बोलना तो नहीं है। तब तक एक तीसरा आया, ये तब तक ये परेशान हो गया, तीसरा आया, उसने कहा मैं तो जहाज पानी के में जाता हूं, 2 महीने बाहर रहूंगा, मेरे परिवार का भगवान मेरा आप ध्यान रखना। तब तक पहला पुलिस लेके आ गया, कहा इधर मेरा पैसा रह गया है, पैसा कहां चला गया, यही है और कोई नहीं, पकड़ो इसको डालो जेल में। ये बेचारा ऊपर से कुछ बोलना चाहे लेकिन चुप रह गया, हां हां करता करता। तब तक भगवान वापस आ गए, इसने बोला लो अपना सारा पगड़ी, लो लो ये अपनी बांसुरी, या क्या हो रहा है इधर तो क्या चल रहा है। बोला क्या हुआ? बोला पहले आया पैसा चढ़ाने के बाद पैसा भूल गया। भगवान ने कहा उन पैसों से रिश्वत देने जा रहा था, किसी को शराब पिलाता और मांस खिला देता, मेरे मंदिर में आया उसको पाप कर्म तो करवाना नहीं मुझे, ठीका उसको मिल गया लेकिन उसका पैसा धर्म के काम में लग गया। बोला ये बात तो समझ में आ गई, फिर वो जेल में क्यों गया दूसरा? बोला जहाज डूब गया, जिसमें जाना था जहाज डूब गया, अगर ये जेल में नहीं जाता तो आज मर जाता, मेरे को प्रार्थना करे और मर जाए तो इसकी प्रार्थना कैसे पूरी होगी। वो जाके देखे तो अरे जहाज तो डूब गया कल, तो भगवान को पता लगता है कि किसको क्या करना है, हमको पता नहीं लगता है कि भगवान कब क्या किसके साथ कैसे करता है। तो भगवान की लीलाएं समझना इतना आसान नहीं। तालवन में भगवान बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया, गोपियों ने 5 साल की गोपियां उन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत किया कि कृष्ण हमको पति के देव रूप में मिले, और जब उनका व्रत पूरा होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया कि आने वाली शरद ऋतु में आपके साथ रास करूंगा। और फिर गोपियां जो बड़ी उम्र की थी वो कहती श्री कृष्ण रोज गैया चराने चला जाता है और बांसुरी बजाता है, उस बांसुरी का सुख जंगल वालों को मिलता है, वहां हिरनिया कितना सुख लेती हैं उसकी बांसों में उनको देख सकती हैं, हम तो कृष्ण की ओर देख नहीं सकती। वहां जंगल में काम करने वाली बिचारी गरीब भीलनियां अभीरियां उनको भी भगवान के चरणों का लगा हुआ कुंकुम मिल जाता है, चंदन मिल जाता है। कितने भाग्यशाली है ये गोवर्धन जिसके ऊपर भगवान के चरण पड़ते हैं, भगवान को जल देता है, भगवान को अच्छे अच्छे कंदराएं देता है गर्मियों में ठंडी, भगवान को ठंडी हवा देता है। ये गोवर्धन तो सबसे बड़ा भगवान का भक्त है। अरे भगवान जब वन में प्रवेश करते हैं, मोर पंख ऊपर धारण किया है, बांसुरी बजाते हैं, वैजंती माला पहनी हुई है, गोपों के संग में जब जाते हैं कितने सुंदर लगते हैं। गोपियों का ये पहला गीत है 5 गीतों में वेणु गीत। और इसके बाद भगवान ने कहा कि अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियां इन्होंने तो भक्ति की, अब तो मेरी भगवता को जान गए। देवता इंद्र को जरा अहंकार हो गया है, और हमारे ये बड़े बुजुर्ग कब से इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। दिवाली के दूसरे दिन श्री कृष्ण 7 वर्ष का हो गया, और 7 वर्ष के श्री कृष्ण को मां ने बड़ा सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाया, और श्री कृष्ण सज धज के बलराम जी के साथ जहां गोपों की गोष्ठी हो रही थी, आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे थे, वहां पहुंच गए। और जाते ही पूछा, पिताजी इतनी बड़ी तैयारी हो रही है, ये उत्सव क्या है। पिताजी ने कहा, बेटा हमारी परंपरा है, पूर्वज करते आ रहे हैं, हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। बोला, क्यों करते हो। बोला, इंद्र वर्षा करता है, जब इंद्र वर्षा करता है तो हमारी गैया घास खाती है, हम तो वन में रहने वाले हैं, हमको घास चाहिए, पानी चाहिए। भगवान कहते, इंद्र का इसमें क्या जाए, हम अच्छा काम करेंगे तो भगवान की कृपा से बरसात भी होगी, सब अच्छे काम का फल अच्छा मिलेगा। तो इंद्र की पूजा कौन से शास्त्र में लिखी हुई है, क्यों कर रहे हैं। बोला, शास्त्र में नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से करते आ रहे हैं, ऐसे बहुत से हमारे घरों में हम काम करते हैं जिसको हमको पता नहीं शास्त्र में उसका उल्लेख है कि नहीं। शादी हुई, नई दुल्हन दरवाजे के ऊपर आई, पुराने जमाने में सास उसका स्वागत करती थी और कुमकुम का जल आगे रखती थी थाली में ताकि उसके पांव घर के अंदर लक्ष्मी के रूप से पड़े, लेकिन सास आज आगे आके स्वागत नहीं कर रही थी। तो बहू कोने से देख रही थी कि सास देर क्यों कर रही है। उसने देखा सास ने एक बिल्ली को पकड़ा है और बिल्ली के ऊपर टोकरा ढक दिया, टोकरी ढक दी, और फिर भागती हुई आई। अंदर बहू तो आ गई, बहू को ये बात याद रह गई, इसका बेटा हो गया, बड़ा हो गया, उसकी शादी होने लगी, उसकी बहू बाहर आई तो ये जा नहीं रही है जल्दी। बोला, बिल्ली लाओ, को बिल्ली दो, टोकरा दो, बिल्ली चाहिए, टोकरा चाहिए। अरे करेगी क्या। बोला, मैं जब शादी करके आई थी तो मेरी सास ने बिल्ली के ऊपर टोकरा ढक के फिर मेरा स्वागत किया था, बिल्ली टोकरा नहीं है तो कैसे स्वागत करो। तो वो सास अभी तक जीवित अंदर बैठी थी। बोला, बहू मिठाई का थाल खुला था, बिल्ली घूम रही थी इसलिए टोकरा ढका था, कोई वेद का मंत्र नहीं पढ़ना था। तो ऐसे बहुत सी पूजा पाठ हमारे लोग करते हैं, ऐसे देवी देवता हमने बनाए हैं जिसका कोई नाम निशान नहीं, शास्त्रों में उसका कोई वर्णन नहीं। तो कृष्ण ने कहा, नहीं, हमारे को पूजा गोवर्धन की करनी चाहिए, हमारी गैया तो वहां चरती, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए जो हमारा सारा भला करते हैं, इंद्र की पूजा की क्या जरूरत है। एक बालक के तर्क वितर्क से सारे गोप संतुष्ट हो गए। लेकिन पहले नंद बाबा ने कहा देखो इंद्र की पूजा कर ले
फिर गोवर्धन की भी पूजा कर लेंगे।
बोला नहीं, इसी सामग्री से आज ही पूजा गोवर्धन की होगी। और सबने कृष्ण की बात को माना और सारी सामग्री उठाकर बैलगाड़ियों के ऊपर भर के गोवर्धन की पूजा करने के लिए चले गए।
गोवर्धन कौन है? गो मतलब गाय, वर्धन मतलब उसका वृद्धि करने वाला, गायों को सुख देने वाले को गोवर्धन बोलते हैं। गौओं की वृद्धि करने वाला उसको कहते हैं गिरिराज। गिरी कहते हैं पर्वत को और राज कहते हैं राजा को। अरे हिमालय पर्वतों का राजा है? नहीं, गोवर्धन पर्वतों का राजा है गिरिराज। गिरिराज गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुआ है, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हृदय से प्रकट हुआ। और भगवान श्री कृष्ण जब अवतार का समय आया तो राधा रानी को कहा कि अब तो हमको वृंदावन चलना है। गोलू बोला मैं उधर क्या करूंगी, वहां न जमुना जी है न गोवर्धन है, तो मेरे को कैसे सुख मिलेगा। भगवान ने कहा जमुना जी को तो भेज दिया है, गोवर्धन भी पृथ्वी पे चला गया है। तो गोवर्धन पहले सामल द्वीप में आया, द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में आया। तो एक पुलस्त ऋषि द्रोण पर्वत के पास चला गया सामल द्वीप में। हम रहते हैं कौन से द्वीप में, कल आपको बताया था। और ये एक और द्वीप है उसका नाम है सामल द्वीप। वहां रहते थे द्रोण जी महाराज, उसके बेटे के रूप में गोवर्धन प्रकट हुआ। पुलस्त ऋषि ने कहा कि मैं बनारस से आया हूं, काशी में कोई पर्वत नहीं है, ये आपका बेटा हमको दे दो, हम वहां ले जाएंगे। अरे बेटा आपको कैसे दे दें, लेकिन ऋषि को ना भी कैसे करें। तो गोवर्धन ने कहा मैं चल लूंगा, मेरे को उठा के चलो, लेकिन कहीं रखोगे तो मैं वहां से हिलूंगा नहीं। बोला नहीं, मैं अपने योग बल से तुम्हारे को उठा के चलता हूं। गोवर्धन को उठाया पुलस ऋषि ने, जहां आज ब्रज है, यहां पुलस ऋषि को लघु शंका का बहुत ज्यादा लगी। इसने नीचे गोवर्धन को रखा, लघु शंका करके जमुना में स्नान करके वापस उठाने को आया तो उठे नहीं। अरे तुमको उठोगे नहीं? बोला मैंने कहा था एक बार रख दिया तो नहीं उठूंगा, तेरे को शराब देता हूं, रोज राई जितना अंदर चला जाएगा। तो पुलस्त ऋषि ने इसको यहां पहुंचा दिया। पहले ये गोवर्धन बहुत बड़ा हुआ करता था, ले आस्ते आस्ते थोड़ा नीचे जा रहा है। और रामायण में कथा आती है कि गोवर्धन को हनुमान जी एक कल्प में उठा के आ रहे थे, और जहां अब वृंदावन है यहां पहुंचे, तब तक समाचार आ गया कि सेतु बंद गई और कुछ पत्थरों की जरूरत नहीं है, तो यही हनुमान जी ने रख दिया। अब गोवर्धन कह रहा है मैं राम जी की सेवा में नहीं जा सका, ऐसे कैसे होगा। तो राम जी को कहा कि वो बड़ा दुखी हो रहा है। राम जी ने कहा उसको कहो आज सेतु के ऊपर तो मैं केवल चरण रखूंगा, लेकिन तेरे को तो मैं कर कमल के ऊपर हाथ के ऊपर धारण करूंगा। गोवर्धन जी तुम वहीं विराजमान रहो, ब्रज में तुम्हारा स्थान है। तो गोवर्धन ऐसे कोई सामान्य पर्वत नहीं है, भक्तों के लिए तीन पर्वत ब्रज में, ब्रह्मा जी नंदगांव में पर्वत के रूप में बैठे, सॉरी ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत के रूप में बैठे, चतुर्मुखी ब्रह्मा, बरसाना चार मुख वाला पर्वत है। नंदगांव में भगवान शंकर पर्वत के रूप में बैठे, और विष्णु साक्षात गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए। तीनों देवता ब्रज में पर्वत के रूप में भगवान का लीला का दर्शन कर रहे। सो गोवर्धन की पूजा के लिए भगवान मुखारविंद के पास गए, और भगवान श्री कृष्ण गोपों के साथ खड़े हैं, लेकिन श्री कृष्ण गोवर्धन के ऊपर स्वयं खड़े हो गए, गोवर्धन के रूप में भगवान ही खड़े हो गए। और फिर जो भोग लगा था वो खाने लगे और कहने लगे और लाओ अणियोर, और लाओ। एक गांव है गोवर्धन के परिक्रमा, उसका नाम ही है अणियोर, अणियोर नाम है उसका। और लाओ और लाओ। ग्वाल बाल बोलते हैं कन्हैया ये तो भूखा है, सब खा गया, कुछ नहीं छोड़ा, सब दो दो हाथ से ऐसे लंबा करके खा रहा है। बोला नहीं, आपका इंद्र कभी आया, आपका भोजन खाया, ये देखो गोवर्धन साक्षात भगवान देवता से अपने भक्त की पूजा को मानता दिला रहे हैं। अब जब पूजा भोग लग गया, फिर गोवर्धन ने प्रसाद सबके रूप में सबको वापस दे दिया, ग्वाल बालों ने बड़ा प्रसाद खाया, और फिर गोवर्धन की परिक्रमा की, नौजवानों ने पैदल की, बूढ़ों ने बैलगाड़ियों में की और ये परिक्रमा करने के बाद सब गोप ग्वाल बाल अपने घर चले गए। इंद्र ने देखा मेरी पूजा आज हुई नहीं, मेरे को आज भोग लगा नहीं, मेरे आज सामान आया नहीं। इंद्र को क्रोध आ गया, पूजा की जो आदत पड़ गई थी, पूजा नहीं मिली तो बड़ा क्रोध आ गया। आदत मान लेने की डालनी नहीं चाहिए, अपमान होने के ऊपर बहुत दुख होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमेशा सेवा करते रहते हैं, कभी समय मुश्किल आ जाता है, सेवा नहीं कर पाते हैं मंदिर की, तो उस वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि अरे बड़ा आदमी हो गया है ये सेवा छोड़ दी, पता नहीं क्यों छोड़ी हो। जाके कहना चाहिए इतने साल से सेवा कर रहे थे, कोई संकट है क्या, हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं क्या, ऐसा विचार होना चाहिए। इंद्र को पूछना चाहिए कि हमेशा सेवा करते थे, अब आपको कोई संकट है क्या, मैं कोई सहायता करूं, ऐसे पूछना चाहिए ना। इसके बजाय इंद्र ने अपमान अपना समझ लिया और कहा इस ब्रज की सारे गैयों को डुबा दो, जाओ बादलों प्रलय काल में जो समंत बादल होते हैं उनको और मरुतों को, हवा को बोला तूफान और वर्षा के साथ ब्रज को डुबा दो। इतनी आंधी तूफान और वर्षा होने लगी, हाहाकार मच गया ब्रज के अंदर, गैया भी चिल्ला रही हैं और ग्वाल गोप कह रहे हैं क्या करें, कृष्ण का मैंने गोवर्धन की पूजा किया, कराइए हमारी गोवर्धन की पूजा हुई है तो गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे, आप सब आओ गोवर्धन के नीचे। और यहां श्लोक लिखा है कौन गोवर्धन को उठा रहा है, इति उत्कैवे न हस्ते न कृतवा गोवर्धन अचलम, जो गोवर्धन अचल है पर्वत है चलता नहीं है उसको भगवान ने अपने हाथ के ऊपर उठा लिया। दधार लीलिया विष्णु, लिखा है विष्णु, ये भगवान की लीला है, ये उठाया है ये भगवान है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं अरे फलाने भगवान के पास हम गए थे, फलाना हमारा गुरुजी भगवान हो गया, वो सिद्ध हो गया, तो हमारे भक्त कहते हैं उनको पूछो कि आपने गोवर्धन जी उठाया होगा ना, अभी पहले तो गोवर्धन आपने उठाया ही होगा ना, भगवान थे तो, अब गोवर्धन तो आपसे उठे ना उठे उसका पता नहीं, लेकिन 1 किलो की ईंट को आप 7 दिन ऐसे ऊपर हाथ में खड़े रख के दिखाओ, एक भी भगवान इस कसौटी पे पूरा नहीं उतरेगा। समुद्र मंथन के समय कच्छप के अवतार में, कछुआ के अवतार में भगवान की पीठ के ऊपर पूरा मंदराचल पर्वत को मंथन किया गया और कछुए को लगा मां मेरे सर को ऊपर खुजा रही है और कछुआ को नींद आ गई, कछुआ को नींद आ गई। तो एक ऐसा कोई भगवान कहीं दिख जाए उसको कहना आप कच्छप अवतार लिया था महाराज, तब मंदराचल पर्वत आपकी पीठ के ऊपर घुसा था, आपको नींद आ गई थी, आप बड़े शक्तिशाली हैं, आप सो जाइए महाराज, पर्वत तो हमसे नहीं उठेगा, 100 क्विंटल का पत्थर का मंथन आपकी पीठ के ऊपर करते हैं, आप सो गए तो हम आपके चरणों में प्रणाम करेंगे, लेकिन 100 क्विंटल 1 क्विंटल का पत्थर अगर पीठ के ऊपर घिसा जाएगा तो प्राण निकल जाएंगे महाराज। भगवान बनने की मूर्खता मत करो, भगवान भगवान है, भगवान के चरण पकड़ लो। गुरु जी को हम भगवान कहते हैं लेकिन भगवत गीता में जहां भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वहां लिखा है श्री भगवान। गुरुदेव को भी भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर को भी भगवान कहते हैं, लेकिन श्री भगवान किसी को नहीं कहते। श्री का मतलब लक्ष्मी, तो लक्ष्मीपति तो नहीं है ना, न ब्रह्मा लक्ष्मीपति है, न शंकर लक्ष्मीपति है, न गुरुजी लक्ष्मीपति है, गुरु भगवान के समान है, भगवान से भी महान है। किस बात में, कृपा करने में। गुरु सिर्फ भगवान के समान है कृपा करने में, गुरु भगवान की कृपा की मूर्ति है, गुरु सृष्टि नहीं कर सकता, गुरु रासलीला नहीं कर सकता, ये उसका काम नहीं है, गुरु गोवर्धन नहीं उठा सकता, लेकिन गुरु कृपा करने में भगवान। प्रभुपाद जी का नाम लिखा है श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, भगवान की कृपा की मूर्ति है, वो कृपा करता है, गुरु इस बात में भगवान के समान है, उसको भगवान के समान आदर देना चाहिए, लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान का प्रिय है। सो गोवर्धन को भगवान ने किसने उठाया, बोला भगवान ने ये उठाया, लीलया विष्णु छत्राकम एव बालक, छत्राकम एव बालक, जैसे छोटे बच्चे, वो मशरूम होता है ना छोटा, इतना वो भी छाता जैसा लगता है ना, उसको छोटा बच्चा जैसे उखाड़ लेता है, ऐसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ऐसे उठाया और अपने उल्टे हाथ के ऊपर धारण कर लिए। किसने? भगवान विष्णु ने। यहां जहां सीधा लिखा है भगवान, ये भगवान की है, भगवान की लीला है। सारे ग्वाल बाल गोप सब उसके नीचे आ गए। 7 दिन तक अब यशोदा मैया कहती है मेरे बेटे के ऊपर इतना सारा भार है, आप लोग सब क्या कर रहे हो? अरे ग्वाल बालों ने कहा मैया तू चिंता मत कर, हम भी डंडे लगाते हैं। अरे सब ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तेरा हाथ थक गया है, इसको थोड़ा चंपी कर दे, श्री धामा को थोड़ी देर के लिए दे दो। बोला नहीं आप लकड़ी लगा लो। सबने अपने अपने डंडे लगा लिए। कहते हैं फिर भी शक्ति कहां से आए, तो बिल्कुल सामने राधा रानी को सिंहासन के ऊपर गोपियों के बीच में विराजमान कर दिया। उसके ऊपर भगवान की दृष्टि से आंख मिली है और गोवर्धन धारण करके भगवान खड़े हैं। 7 दिन पूरे हो गए, पानी का एक बूंद भी ब्रज में नहीं गिरा। आकाश में सुदर्शन चक्र भगवान का पानी को सुखा रहा था। अगस्त ऋषि सारा पानी ऊपर के ऊपर, बाकी गिरता हुआ पानी अगस्त ऋषि पी गए। 7 दिनों के बाद सारे बादल कहते हैं इंद्र वहां कुछ नहीं हो रहा, एक पानी की बूंद वृंदावन में नहीं गिरी। हवा ने कहा हम कुछ नहीं कर पाए। अब भगवान ने वापस गोवर्धन को अपने स्थान पर रखा। सब ग्वाल बाल अपने घर गए और दूसरे दिन सारे ग्वाल आके कहते हैं नंद बाबा ये तुम्हारा बेटा है कौन? इतना पहाड़ कोई उठा सकता है क्या? कोई देवता है? तुमने हमको बताया नहीं। नंद बाबा ने कहा भैया बैठो दूध पियो दही खाओ, मैं आपको बताता हूं। गर्ग आचार्य ने जब इसका नाम रखा था तो कहा नारायण के समान आपकी रक्षा करेगा। वही श्लोक नाम वाले पढ़ लिए सारे के सारे दोबारा। सबने बोला अरे गर्ग आचार्य ने कहा था नारायण के समान, हमारा लाला ऐसा है। वाह वाह वाह, दही दूध पिए सब चले गए। दूसरा दिन गया, ये कौन से दिन गोवर्धन भगवान ने उठाया? दिवाली का दिन अमावस का आता है, अमावस के दूसरे दिन उठाया। एकम को उठाया, द्वितीया को दूसरे 7 दिन उठाया, तो 7 दिन 1 और 7 8 अष्टमी हो गई ना। अष्टमी आ गई, नवमी को सारे ये आए ब्रजवासी नंद बाबा को कहने के लिए कि कौन है तुम्हारा बेटा, कैसे इतना बड़ा अद्भुत कार्य कर सकता है। 10वीं के दिन इंद्र आया पूजा करने के लिए, कहा मुझसे अपराध हो गया, मैं कुछ नहीं बिगाड़ सका। बोला मैं कैसे सामने जाऊं कृष्ण के? सुरभि गाय को पहले भेजा और गाय ने आते ही कहा कृष्ण तुम हमारे इंद्र हो, तुम्हारा नाम गोविंद है, तुम गायों को सुख देने वाले हो, वो इंद्र होगा देवताओं का देवता, हमारे तो आप इंद्र हो। और सुरभि के पीछे गोवर्धन इंद्र जी आया और देवताओं को लाया ऐरावत के ऊपर, सब जलों सब तीर्थों का जल लाए, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। जहां ये अभिषेक हुआ है उसको कहते हैं गोविंद कुंड। गोविंद कुंड में असल में सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ है, वो दूध का सागर है, दिखता नहीं है लेकिन है दूध का सागर। भगवान का अभिषेक दिया, इंद्र ने बहुत बड़ी प्रार्थना की भगवान की, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान ने बात तक नहीं की, लेकिन इंद्र ने इतना बड़ा उपद्रव किया फिर भी भगवान मुस्कुराए का बहुत अच्छा कोई बात नहीं जाओ। बोला ऐसे क्यों? बोला ब्रह्मा जी ने भगवान को भक्तों से अलग किया, ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी, लेकिन इंद्र ने 7 दिन तक भगवान और भक्तों को साथ रखा और गोप गोपियां सब 7 दिन रात रात साथ रही। सब गोपियों ने कहा कन्हैया ने 7 दिन कुछ खाया नहीं है, तो यशोदा इसको क्या खिलाती थी? बोला 8 बार खाता है घर में। बोला 7 दिन नहीं खाया, 8 बार खिलाती है, 7 8 56, आज 56 भोग बनाओ और भगवान को लगाओ। तब से 56 भोग शुरू हो गया, 56 भोग की विधि तब से शुरू हो गई। अब ग्वाल बाल कृष्ण को पकड़ के कहते हैं अरे तू क्या समझता है, तूने गोवर्धन उठाया, हमारे डंडे नहीं थे? गोपियां कहती हैं ए कन्हैया तेरे हाथ में इतनी ताकत कहां से आई, हमारे घर का मक्खन चुरा के खाया तब ना। और बड़ी गोपियां कहती कन्हैया हम तब मानती तुमने गोवर्धन उठाया, तुमने सीधे हाथ पे उठाया होता, उल्टा हाथ तो राधा रानी का तरफ है, भार सारा राधा रानी के सर के ऊपर दिया और तुम नाम का आप तुम्हारा हुआ। भाई वो वाम भाग तो राधा रानी का है ना, भार तो उसके सर के ऊपर हुआ, नाम तेरा हुआ। भगवान ने कहा नहीं, हाथ में इंद्र देवता रहता है ना, मैं इंद्र के सर के ऊपर ही गोवर्धन को रख दिया था, मैं तो ऐसे ही खड़ा था, इंद्र ही उपद्रव कर रहा था, इंद्र के सर के ऊपर ही गोवर्धन रख दिया। सो यहां गोवर्धन पूजा हो गई, नवमी तिथि होगी, दशमी का दिन आया, पूजा करके इंद्र गया। एकादशी को व्रत रखा नंद बाबा ने, द्वादशी को सुबह सवेरे नंद बाबा जमुना स्नान करने गए, वापस नहीं आए। अब देवता तो अनुकूल हो गए, मिंदर ने तो प्रणाम किया, भगवान की पूजा करके सब देवताओं के साथ गया, ब्राह्मण पहले से अनुकूल हो गए थे। अब नंद बाबा जब वापस नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण जमुना में कूद गए और सीधे वरुण लोक में चले गए, और वरुण देवता कृष्ण को देख के उसकी आरती करने लगा, पूजा करने लगा, सिंहासन पे बिठा दिया। नंद बाबा देख रहा है, अरे हमारे बेटे की इतनी पूजा हो रही, और फिर बड़े वस्त्र आभूषण दिए, नंद बाबा को भी दिए, कन्हैया को बड़े वस्त्र आभूषण दिए, और वहां से विदा किया। दोनों बाप बेटा बाहर निकले, नंद और कृष्ण, कपड़ा भी भूला नए और कुछ भीगा हुआ नहीं है। ग्वाल बालू ने कहा, नंद बाबा ये नए कपड़े कहां से पहन के आ गए, कहां चले गए सुबह से? नंद बाबा कहता है, इस कन्हैया हमारे को बड़े बड़े लोग जानते हैं, अंदर बड़े देवता इसकी पूजा कर रहे थे, मैं इसका पिता हूं इसलिए मेरे को इतना सब दे दिया। नंद बाबा को छोड़ दे, ग्वाल बाल के दे, कन्हैया क्यों तेरे पिता को सिर्फ नए कपड़े दिलाने, बड़े बड़े लोग दिखाता है, हमको घुमाने नहीं चलता, हमको भी वैकुंठ दिखाओ। अरे कन्हैया ने कहा, तुमको वैकुंठ दिखना है, चलो वैकुंठ दिखाते। भगवान उनको गरुड़ गोविंद के पास लाया, गरुड़ को कहा कि इनको जाके वैकुंठ दिखा के आओ। गरुड़ गोविंद का मंदिर एक है आज भी छत्तीसगढ़ में। ग्वाल बाल देखते हैं कृष्ण बैठा है, शंकर जी हाथ जोड़ के पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, वो नारद जी स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं अरे देखो हमारे कन्हैये की कितनी बड़ी पूजा करते हैं। एक ग्वाल बाल कहता है, अरे कन्हैया से जरा हाथ मिला लो, हे हट जाओ यहाँ से, नारायण के पास कोई नहीं जा सकता वैकुंठ में। बोला गैया, बोला यहाँ गैया नहीं है, बोला मैया, यहाँ कोई मैया नहीं, नारायण की कोई माता वाता नहीं होती। अरे बोला कन्हैया तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए, ना गैया है ना मैया है, ना मिलने को देते हैं, ये वैकुंठ को नमस्कार है, नहीं चाहिए वैकुंठ, हम वृंदावन में अच्छे हैं। वैकुंठ भगवान ने अदृश्य कर दिया, अब सारे ब्रजवासी भगवान की महिमा को जान गए। इसके बाद रास पंचोध्याय आते हैं, जो भागवत का प्राण है। भगवान ने गोपियों को वचन दिया था, शरद ऋतु आई और पूर्णिमा आई, चंद्रमा आकाश में निकला, जमुना के तट पे बंसी बट पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने होंठों के ऊपर बंसी को पधराया और बंसी को बजाने लगे। यहां भी पहला शब्द लिखा क्या है भागवत में, भगवान अपि तारात्रि। ये लीला कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। लेकिन इस बात को कहने से पहले आपको यह समझा दें, कि गोपियां कौन है, फिर इस कथा को आगे करें। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है, जब उनको सृष्टि करनी होती है तो अपने सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी को पहले प्रकट करते हैं, बलराम जी फिर विष्णु के रूप में परिवर्तित होकर सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा आदि फिर आगे पालन कर सृष्टि करना पालन करना ये सब काम भागी होता है। भगवान को जब लीला करने का इच्छा होता है तो अपने वाम भाग से राधा रानी को प्रकट करते हैं, राधा रानी भगवान के वाम भाव से भाग से प्रकट करती है और गोलोक धाम में प्रकट हुई और बहुत सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हुई। भगवान ने उसके ऊपर दृष्टि डाला, वो दौड़ के एक फूल को उखोड़ा, फूल को उठाया और भगवान के चरणों में अर्पण किया। वो दौड़ के गई इसलिए उसको कहते हैं धावते, और भगवान को फूल अर्पण किया उसको कहते हैं आराधना करना, तो राधा नाम हो गया राधा। और जितनी भी गोपियां हैं ब्रज में वो राधा रानी का काया व्यू है, राधा रानी अपने एक से अनेक गोपियों के रूप में हो जाती। जितनी रानियां भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में 16108 है, वो राधी राजा रानी का प्रतिबिंब है। जितनी लक्ष्मियां वैकुंठ में है वो सब राधा रानी का विस्तार है, और राधा रानी का छाया का रूप, परछाई के रूप में दुर्गा इस संसार का संचालन करती है। ये सारी शक्ति राधा रानी से निकलती है। तो न राधा रानी स्त्री है, लड़की नहीं है, गोपियां स्त्रियां नहीं है, भगवान की शक्ति है, भगवान के आनंद के लिए प्रकट हुई है। और गोपियों में भी दो प्रकार का विशेष रूप से, एक नित्य सिद्ध गोपियां हैं जो राधा रानी का विस्तार है, एक साधना से सिद्ध हुए हैं जैसे दंडकारण्य के ऋषि। दंडकारण्य के ऋषि रामचंद्र को सीता जी के साथ देख के बड़े प्रभावित हुए और कहा, ऐसा भगवान हमको प्रेम से आपकी सेवा करने का अवसर कब मिलेगा। रामचंद्र ने कहा, इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, आपकी इच्छा पूरी होगी जब आप द्वापर युग में गोपियां बन के आओगे। तो ऋषि गोपियां हैं, एक एक वेद की ऋचाएं गोपियां हैं, एक अयोध्या की सब स्त्रियां हैं जो गोपियां बन के आई हैं। तो गोपियां, गोपियों के अलग अलग वर्ग हैं, और गोपियों को ऐसे अलग वर्गों में बांटते हैं, और एक गोपियों का दूसरा भी विभाजन है, एक लेफ्टिस्ट गोपियां से उसको कहते हैं स्वपक्षीय गोपियां, वो कहती है कृष्ण हमारा है। दूसरी है राइटिस्ट गोपियां, राइटिस्ट गोपियां का मतलब विपक्ष गोपियां, वो कहती है हम कृष्ण की हैं, कृष्ण हमारा स्वामी, प्रीतम हम उसकी। और एक कहते हैं कृष्ण हमारा है, हम वो दूसरी कहते हैं हम कृष्ण की हैं, और एक बीच की हैं तटस्थ गोपियां, न इस तरफ है ना उस तरफ है, बीच में है। तो ये गोपियों के बहुत सारे रहस्य है, स्त्रियां नहीं है इतना समझ लो। भगवान ने बांसुरी बजाई तो ये लीला, उस समय कामदेव आ गया। कामदेव भगवान के सामने आया, सब ऋतुओं का, सब मौसमों के फूल लाया, पांच सरबाण लाया साथ में। कन्हैया ने कहा, कैसे पधारे? बोला, आपसे युद्ध करना है, मैं आपसे लड़ने के लिए आया। कामदेव, लड़ने के लिए आया, कौन सी लड़ाई करोगे? बोला, कौन सी लड़ाई करनी है, किले में लड़ोगे कि मैदान में लड़ोगे? बोला, किले की लड़ाई कौन सी होती है? बोला, मैं समाधि में कृष्ण ने कहा बैठ जाता हूं, तुम मेरे को विचलित करके दिखाओ। कामदेव ने कहा, ऐसे शंकर जी को विचलित किया था, तीसरा नेत्र खोला, मेरा शरीर भस्म कर दिया, बड़े बड़े ऋषियों को मैंने समाधि खोल दी। आपको परसों बताया, हा शायद याद होगा, नर नारायण भगवान बद्रिक आश्रम में, उसको कामदेव इंद्र के कहने के ऊपर प्रास्त करने के लिए गया, क्योंकि तपस्या कर रहा था, बड़ी अप्सराओं को लेके गया। भगवान मुस्कुराए और अपनी जांग से एक अप्सरा निकाली, उर्वशी, कहा कि ऐसी तो मेरे रोम रोम में समाई हुई है, ये ले जाओ, इंद्र को मेरी तरफ से उपहार दे देना। तो भगवान का क्या बिगाड़ सकता है कामदेव? ओ कृष्ण, फिर दूसरा मैदान की लड़ाई किसको बोलते हैं? बोला, मैं रासलीला करता हूं और तुम बाण चलाओ, मेरे को प्रभावित करके दिखाओ। भगवान ने कहा, चलो तुम अपने बाण चालू करो, मैं मुरली बजाता हूं। भगवान ने ऐसे वेणु को अपने अधरों के ऊपर पधराया, और कामदेव ने श्री कृष्ण का निशाना लेना चाहा ऐसे आंख बंद करके, और कृष्ण के रूप को देखते कामदेव मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। भगवान ने कहा, अभी बाजा ही नहीं बजाया, युद्ध शुरू नहीं हुआ, तेरा प्राण निकल गया, तू मूर्छित हो गया, तू कहा लड़ेगा, जा बच्चा भाग यहां से। रास लीला हृदय के काम रोग के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, ऐसे सुखदेव महाराज कहते हैं। कामदेव कहां चला गया? कामदेव चला गया गोपियों की दिल में। भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों का नाम लेके बुलाया, तो जिसका नाम ले उसकी घंटी बजे, जैसे आपको जिसको फोन करे उसका ही फोन बजता है। तो गोपी एक अपने सुसर के लिए भोजन की थाली बना रही थी और बैल के लिए भूसा बना रही थी। बैल को तो भूसा देना है, सुसर को भोजन देना है। अब बांसुरी में नाम आया, दिमाग हिल गया, भूसा सुसर के सामने और भोजन बेल के सामने रख दिया। दूसरी गोपी श्रृंगार कर रही थी, काजल आंख में डालना था, लिपस्टिक होंठों पे लगानी थी, बांसुरी में नाम आया, काजल लगा दिया होंठों पे और लिपस्टिक आंखों में। तीसरी गोपी चूड़ियां पहन रही थी, पायल पहन रही थी, तब तक तो गोपी का नाम आया, पायल हाथ में, चूड़ी पांव में, नाक का कान में, ऐसे जैसे गोपियां थी, जो दूध चढ़ाता दूध को छोड़ा, बच्चा आपको दूध खिला रही थी उसको छोड़ा, भागी जाके कृष्ण से मिलने के लिए। तब लिखते हैं कि जो जैसा है वैसा भगवान के पास चला जाता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कोई सज धज के सुरपंखा की तरफ जाए तो नाक कान कटवा के आता है, या पूतना की तरफ जाए तो प्राण ही अपना दे के आना पड़ता है। जैसे है ऐसे भगवान के पास चला जाना है। गोपियां वहां पहुंच गई, भगवान ने कहा आइए आइए आपका स्वागत है, चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आइए। बहुत अच्छा चंद्रमा है, देख लिया? अच्छा जमुना को देखने लिए, देखो चांदी की तरह चमक रही है जमका, अब देख लिया? बन जाओ अपने घर, घोर रात है, बड़े बड़े हिंसक पशु आएंगे, जाओ पतियों की सेवा करो, पुत्रों की सेवा करो, पति की सेवा, चाहे पति निर्धन हो चाहे पति रोगी हो लेकिन उसकी सेवा तो करनी चाहिए, यह शास्त्र का नियम है। भगवान धर्म का उपदेश देने लगे, जाओ घर जाओ। ऐसे क्यों कर रहे थे भगवान? बुलाया और फिर ऐसे आप आज सबको यहां, हमारे राजीव जी ने कहा है हमारे यहां आना, सत्संग के बाद भंडारा होगा, और भंडारे के समय आपको कहे आप हो गया चलो जाओ, क्या जरूरत है? तो आपको कैसे लगेगा? वापस कभी नहीं आएंगे, नहीं ऐसे थोड़ी बुला के थोड़ी कोई करता है। तो यहां तो भगवान ने बुलाया गोपियों को, फोन करके बुलाया और फिर कहा कि अभी जाओ। ऐसे क्यों भगवान कर रहे थे? वो कामदेव उनके हृदय में बैठ के आ गया था। भगवान ने कहा इनको इतना विरह दो, इतनो इसका जुदाई इतनी दो कि इनके हृदय में आग लगे और कामदेव भुन जाए। अब कामदेव भुन गया, कामदेव वहां से भागा, और उस वक्त गोपियों ने एक गीत गाया। गोपियां हैं भगवत गीता के, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, उस कक्षा की है गोपियां, मन मना इस कक्षा की गोपियां हैं, और भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि धर्म का उपदेश दे रहे हैं। कौन सा धर्म? कुल धर्म, जाति धर्म, उसको तो गोपियां छोड़ के आई। गोपियों ने दूसरा गीत गाया, गोपियों का दूसरा गीत है, उसका नाम है प्रणय गीत। प्रणय कहते हैं प्रेम को। गोपियों ने कहा आपने बुलाया है, हम अब कहां जाएं, क्यों जाएं, कैसे जाएं? गोपियों ने कहा कृष्ण आप हमारे को एक प्रश्न का उत्तर दे दो, पतिव्रता स्त्री का पति परदेश गया हुआ हो, स्त्री उसका फोटो रखे, उसको पूजे, उसको खिलाए, उसको पिलाए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, पतिव्रता है, बोला अब ये प्रश्न है कि उसका पति दरवाजे के ऊपर आ गया, घंटी बजा रहा है और ये फोटो को आरती कर रही है, इसको दरवाजा खोलना चाहिए कि फोटो की सेवा करनी चाहिए? कृष्ण कहते हैं पति आया है तो दरवाजा खोलना चाहिए ना। गोपियां कहते हैं कृष्ण यही तो हम कहते हैं, आज तक फोटो घर में पूज रही थी, आज आप मिल गए हैं तो आप फोटो की क्यों पूजा करें, आप ही तो हमारे स्वामी हैं, अब आप मिल गए अब कहां जाएं? भगवान हार गए, गोपियां जीत गई, और भगवान ने उनके संग रास विहार किया। भगवान की उम्र कितनी है? 8.5 साल, 8.5 साल। इस उम्र में लड़का लड़के लड़कियां नृत्य साथ करती हैं, आज भी गरबा करती हैं गुजरात में, वो तो बड़ी करती हैं, लेकिन ये 8.5 साल कोई काम की उम्र नहीं है, ये काम से परे की लीला है, ये प्रेम की लीला है। एक कृष्ण एक गोपी और नृत्य होने लगा। गोपियों को अहंकार हो गया कि कृष्ण हमारे साथ नाच रहा है, और इस रास को महारास कहते हैं, इसमें सब प्रकार की गोपियां थी। राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, तो कृष्ण और राधा दोनों इस रास से अदृश्य हो गए, निकल गए। बाकी सब गोपियों ने हाहाकार, कहां चले गए, कहां चले गए, कहां चले गए। अब सब गोपियां इकट्ठी हो गई और कृष्ण को ढूंढने लगी। देखा दे एक गोपी के पांव, एक कृष्ण के पांव, किसी एक गोपी के साथ गया, राधा रानी के साथ गया था। अब राधा रानी के मन में वही इच्छा आती है जो गोपियों के मन में आती है, क्योंकि वो एक ही है। राधा रानी ने देखा कि सर गोपियां दुखी हो रही हैं, वो कृष्ण को ढूंढ रही है, तो राधा रानी ने कृष्ण को कहा मेरे से चला नहीं जाता आप, तो कृष्ण का कंधे पे बैठ जा। तो जैसे कृष्ण नीचे बैठा और राधा रानी ऊपर पांव रख रही, तब तक कृष्ण अदृश्य हो गया। फिर अब राधा रानी अकेली हो गई और गोपियां और राधा रानी आपस में मिल गई, क्योंकि राधा रानी की इच्छा ऐसी हुई कि गोपियां दुखी ना हो। अब सब मिल गई, सब ने कहा कहां ढूंढेंगे, तब एक विष्णु के रूप में श्री कृष्ण विष्णु के रूप में खड़े हो गए और गोपियों ने कहा हे विष्णु हे नारायण आपको प्रणाम है, आपने कहीं कृष्ण को देखा? विष्णु मिले उसको प्रणाम किया लेकिन कृष्ण ढूंढ रही। गोपियों ने कहा अब ढूंढने से मिलेगा नहीं। गोपियां घर नहीं गई, वन में भटक रही थी, बोला वे गीत गाती है। कृष्ण ने कहा है जहां मेरा कोई गुणगान करता है मैं वहां आ जाता हूं, तो चलो हम गीत गाती। गोपियों ने गीत शुरू किया, उसका नाम है गोपी गीत। ये तीसरा गोपियों का गीत। जमुना के किनारे जहां भगवान से अलग हुई थी वहां ये उन्होंने गीत गाना शुरू किया। बड़ा सुंदर गीत है गोपी गीत। उस गीत को पूरे करते ही कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गया, कहीं गया नहीं था, घूंघट डाल के उनके बीच में घूम रहा था, उधर ही था कृष्ण, कहीं गया नहीं था। जैसे उनका भाव ठीक हो गया कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो गोपियों ने अपनी चुनरियां जिससे आंसू और नाक साफ किया था उनको बिछा दिया जमुना के तट पे, उसके ऊपर कृष्ण को बिठा दिया। कहां रतन बेड़ी के सिंहासन के ऊपर बैठता है, कहां गोपियों के प्रेम से उनकी चुनरियों के आसन के ऊपर बैठ गए। गोपियों ने किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा और कृष्ण को जैसे भाग न जाए पकड़ रखा। फिर गोपियां प्रश्न पूछती हैं, कृष्ण बताओ कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो प्रेम करता है उससे प्रेम करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं आप प्रेम करो या न करो लेकिन सामने वाला प्रेम करेगा, तीसरे वो होते हैं जो आप कितना भी प्रेम करो वो कुछ भी उसको पता नहीं लगता है, वो तो उस प्रेम का जवाब ही नहीं देता है, बताओ कृष्ण ये कौन होते हैं, गोपियां पूछ रही। कृष्ण कहता है पहले तो होते हैं संसारी लोग, तुम प्रेम करोगे मेरे पास आओगे मैं तेरे पास आऊंगा, ये तो संसारी लोग हैं। बोला ये तो कृष्ण ठीक है। बोला तुम प्रेम करो ना करो मैं तो प्रेम करता ही रहूंगा, ये कौन है? बोला ये माता पिता होते हैं, बेचा करे ना करे लेकिन माता पिता कभी नहीं भूलते। बोला तीसरे आप प्रेम करो और सामने वाला आपको उसको पता नहीं लगे, ये कौन है कृष्ण? कृष्ण कहता है ये या तो पागल है जिसको पता नहीं है कोई मुझसे प्रेम कर रहा है, या समाधि में है जिसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, या कृतघ्न है, या एहसान फरामोश है, भलाई करने वाले को जानता ही नहीं है। अब गोपियां एक दूसरे को देख के हंसती है कि ये पागल तो नहीं है ना कृष्ण? ना ये पागल नहीं है, ये समाधि में। बोलो ना समाधि में भी नहीं है, तो बाकी क्या बच गया? बोला हम इससे प्रेम करती हैं और ये कृतघ्न है। ये कृतघ्न है का मतलब एहसान फरामोश है, हमारे प्रेम का जवाब नहीं। कृष्ण हाथ हाथ जोड़ता है, अपना दुपट्टा हाथ में लेके कहता है गोपियां ब्रह्मा जी के दिन तक मैं आपकी सेवा करूं तो भी आपका कर्ज उतार नहीं सकता, मैं आपका ऋणी हो गया, कर्जी हो गया। आपने मेरे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लोक लज्जा छोड़ी, मैं आपका कर्जदार हो गया। मैं आपको दुख देने के लिए अलग नहीं हुआ था, मैं आपके प्रेम को पक्का करने के लिए, क्योंकि अब 100 साल तक कृष्ण वृंदावन से चले जाएंगे, गोपियों और कृष्ण का वियोग 100 साल का होगा, ऐसा प्रेम पक्का हो कि हर जगह कृष्ण दिखाई दे, तो गोपियां मैं आपके प्रेम को पक्का करने के लिए ये लीला की थी। और ये जो गोपियों का कर्ज कृष्ण उतार नहीं सका, कृष्ण इस कर्ज को उतारने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और 24 सालों में घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मित्र बंधु छोड़े, गली गली में कृष्ण का नाम गाते हुए पूरे भारत का भ्रमण किया और संन्यास लिया। ये महाप्रभु गोपियों के रास के प्रसाद के रूप में हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा कलयुग में मिली, क्योंकि उनका कर्ज उतारने के लिए महाप्रभु आए थे। और फिर ब्रह्मा जी की रात्रि तक, ब्रह्मा जी की रात्रि कल्प बराबर होती है, महारास हुआ। इस महारास में भगवान ने सब गोपियों के इष्ट पूरा किया जो वचन दिया था वो। इसके बाद अब भगवान तीन असुरों का वध करेंगे। पहले वृषभासुर एक बैल के रूप में आया, भगवान रास की लीला कर रहे थे गोपियों के साथ। इस असुर ने आके उपद्रव मचाया, भगवान ने बैल के रूप में असुर को पांव से पकड़ के मारा। गोपियों ने कहा हमको हाथ मत लगाना, तुमने एक बैल को मारा है, गाय और बैल को मारने वाला हमको हाथ न लगाए, जाओ सब तीर्थों में जाके स्नान करके आओ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक खड्डा खोदा और सब तीर्थों को कहा आ जाओ इसके अंदर, और वो श्याम कुंड बन गया जो आज गोवर्धन में है। गोवर्धन मोर की शक्ल का है, मोर का भी गर्दन मुड़ा हुआ है, मुखारविंद है, और श्याम कुंड और राधा कुंड उसकी दो आंखें हैं मोर की, और पुछड़ी है पूछ की जगह पे। सो गोवर्धन क्या बात कर रहे थे, हरे कृष्णा, श्याम कुंड भगवान ने बना दिया और उसमें स्नान किया। गोपियों ने कहा हम अपना अपना कुंड बनाएंगे, तेरे कुंड में स्नान नहीं करेंगे। राधा रानी ने अपनी चूड़ी निकाली, कंकणी बोलते हैं, और गोप उस कुंड बनाया। फिर गोपियां लाइन में खड़ी होकर मानसी गंगा से पानी भर के और उस कुंड को भरा, वो राधा कुंड बन गया। ऐसे राधा कुंड का प्रकट्य हो गया। अब कृष्ण ने सब देवताओं को कहा, सब तीर्थों को कहा। तीर्थों की बात के ऊपर ये बात याद आती है, एक बार कृष्ण भगवान ने देखा, कृष्ण की बाल लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं, अब समय कम था, कितनी करें। एक दिन नंद बाबा अपने सालंगराम की पूजा कर रहे थे, रसगुल्ला चढ़ाने के लिए रखे थे 2 डजन। कन्हैया कहता है इतना मीठा माल खाता है ये भगवान, कितना मीठा होगा। बाबा आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं भोग लगाने का, भगवान ने सालंगराम को ही उठा के मुंह में डाल दिया। बोला क्यों, बोला इतना मीठा खाया है, मीठा हो गया होगा ना। नंद बाबा आंखें खोल के देखते हैं, अरे मेरा ठाकुर कहाँ गया, यशोदा मेरा ठाकुर कहाँ गया, ठाकुर कहाँ गया। बोला आप बाप बेटे बैठे हो और तो कोई है नहीं, ठाकुर कहाँ जाएगा। अरे कन्हैया ठाकुर देखा ना, ये बोला मोनी बाबा ठाकुर कहाँ है, ऐसे करके देखे तो कपोल में ठाकुर भरा है, बाहर निकाल लिया, जाके गंगा जमुना में स्नान किया, जमुना में अभिषेक कराया। हे ठाकुर जी मेरे बेटा छोटा है, नाराज मत होना। वो ठाकुर सालंगराम आज भी राजस्थान में पूजित है, और वो स्थान पे है एक, ये बड़ा शहर आता है यहाँ से बॉम्बे जाते हुए, सवाई माधोपुर के बाद कौन सा बड़ा आता है, कोटा में आज भी पूजित है ये ठाकुर जी। एक बार यशोदा मैया को ख्याल आया कि इसकी बुद्धि बढ़ाने के लिए गणेश की पूजा करते हैं, सो सवा सौ लड्डू बनाए, गणेश के आगे आंखें बंद करके बैठी, कन्हैया को बिठा दिया, बैठो आंख बंद करके बैठो, बुद्धि का देवता है तेरा भला करेगा। कन्हैया ग्वाल बालों को साथ खड़े खड़े, माँ ने आंखें बंद की, 4 लड्डू एक को दिया, 4 दूसरे को दिया, आधे लड्डू खत्म हो गए। मैया ने आंखें खोला, अरे कन्हैया तेरी बुद्धि के लिए पूजा कर रही है, लड्डू कहाँ चले गए। पर बोला इसका पेट कितना बड़ा है, देखो इसने खाए होंगे गणेश ने, ये लड्डू और कहाँ जाएंगे। अरे इसने कैसे खाए होंगे कन्हैया, ये तो मूर्ति है ना। बोला फिर इसको अर्पण कर रही तो ये नहीं खाएगा, तो मैंने खाए। तो ग्वाल बाल कहते कन्हैया ने हम सबको बांट के दिए हैं। हे गणेश मेरे बेटे ने तुम्हारे भोग लगाने से पहले लड्डू खा लिए। गणेश ने कहा कि इसने अच्छा किया, अब मेरे को महाप्रसाद मिल गया है, इसकी बुद्धि में से गीता ऐसी निकलेगी पूरी दुनिया पड़ेगी, ये हमारे लिए आराध्य है। बाहर बच्चों में जब खेलते थे कन्हैया, तो बच्चे कहते थे वो नंद बाबा कभी भोजन नहीं करते थे बगैर बच्चे, कब कृष्ण बलराम आके बैठते हैं तब भोजन करेंगे, बुलाने जाओ आते नहीं थे, लड़के खेल में है आते नहीं है। यशोदा जाके जबरदस्ती कहती है चलो, हाथ पांव धुला के भोजन के लिए बिठा देती। अब नंद बाबा उनको खिलाते, खुद भी खाते, तो नंद बाबा ने मिर्ची उठा के खाई, कन्हैया ने देखा, और नंद बाबा उधर देखा, उसने मिर्ची उठा के कन्हैया ने खाई, शू आंखों से आंसू, हा हा हा, अरे क्या हो गया। यशोदा इसने मिर्ची खा ली, उसके घी डालो, मुंह में चीनी डालो, तब से वात्सल्य प्रेम के भक्त मिर्ची को हाथ नहीं लगाते कि कन्हैया को मिर्ची खाने में कष्ट हो जाएगा। अब नंद बाबा कहते हैं यशोदा बस ज्यादा मत डालो, पेट भर गया। कन्हैया बोलता पेट भर गया, ऐसे पेट को देख के या नाभि को देख, बोला इतना बड़ा खड्डा खाली पड़ा है नहीं भरा, और उठा के कढ़ी और नाभि के अंदर डाल दिया। और नंद बाबा कहता है यशोदा ये तेरे लाले का काम देखो, कढ़ी को पेट के ऊपर डाल दिया। अब ये लीला क्यों करते थे? क्योंकि इससे सबको आनंद 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 के समुद्र में डुबा देते थे। सो तीर्थों की बात पे एक दिन यशोदा मैया को देखा, कचौरी बना रही है और मटरी बना रही है और लड्डू बना रही है। कन्हैया ने कहा क्यों मैया आज ये सब भोजन क्यों बन रहा है? बेटा तुम्हारे पिताजी कहते हैं प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने जाएंगे। अच्छा मैया, बस इतना कृष्ण ने कहा। दूसरे दिन सुबह नंद बाबा स्नान करने के लिए पावन सरोवर गए, नंद गांव से स्नान करने के लिए उतरे तो देखा सामने से कोई प्रकाश आ रहा है, देखा तो एक व्यक्ति नीचे उतरा और पावन सरोवर में स्नान किया और निकल के बाहर आया तो नंद बाबा ने प्रणाम किया, देवता आप कौन हो, कहां से पधारे हो, आप हमारे नंद गांव में आए, आपका स्वागत है। तो वो देवता कहता है मैं प्रयागराज हूं, रोज पापी लोग मुझ में स्नान करके जाते हैं, मैं रोज रात को यहां पावन सरोवर में पवित्र होने आता हूं। नंद बाबा वापस आए स्नान करके, कहा यशोदा को ये लड्डू ये मटरी ये कचौरी सब बांट दो। बोला क्यों? बोला प्रयागराज यहां हमारे पावन सरोवर में पवित्र होने आता है, हम कहां जाएंगे प्रयागराज में, तो यही आ जाता है, सब सारे तीर्थ वृंदावन में, वृंदावन ब्रज में सारे तीर्थ है। सो भगवान ने सब तीर्थों को कहा कि राधा रानी को प्रार्थना करो कि तुम्हारा जल को स्वीकार करे। सब तीर्थों ने प्रार्थना की तो राधा रानी ने श्याम कुंड से एक जगह रास्ता काटा, श्याम सुंद का श्याम कुंड का जल राधा कुंड में आ गया। और फिर राधा रानी ने कहा आज से मैं रोज श्याम कुंड में स्नान करूंगी। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं रोज राधा कुंड में ही क्रीड़ा करूंगा। राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण को राधा के समान प्रिय है। ये असुर भगवान ने मारा इसलिए कि धर्म में ना धर्म के नाम में ब्रजवासियों को कोई मेरे प्रेम भक्ति से विचलित न करे। फिर एक वो और असुर आया व्यामासुर, ये एक पक्ष में हो गया, दो पक्ष में ग्वाल बाल आपस में खेल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद जिस ग्वाल बाल हारे उसको पकड़ के एक गुफा में जाके बंद कर दे। थोड़ी देर के बाद ग्वाल बाल कम होने लगे। कन्हैया ने कहा ये ग्वाल बाल हम ज्यादा थे, कम हो कैसे हो गए? बलराम जी ये कौन है? ये व्यमासुर, ये उठा के कहीं जाता है। भगवान ने व्यमासुर को मारा और गुफा से सब ग्वाल बालों को निकाला। ये व्यमासुर गुफा आज भी काम्य वन में है, व्यमासुर गुफा है, ऊपर चढ़ के पहाड़ में जाके देख के आते हैं। ये कौन सा असुर था भगवान ने मारा व्यमासुर? बोला योगी, योगी लोग सिद्धियां दिखाते हैं ना, ऐसे योग के नाम में भक्तों को प्रेम भक्ति से विचलित कोई न कर सके, न धर्म के नाम में न योग के नाम में। तीसरा असुर आया, उसका नाम था केशी, आज भी केशी घाट है वृंदावन में। केशी घोड़े के रूप में हिनहिनाता आया, श्री कृष्ण ने अपना हाथ केशी के मुंह में डाला, केशी का प्राण निकल गया। बोला हिनहुनाता हुआ हाईग्रीव राक्षस एक बार वेद चुरा के गया था, तो ये वेद चुराने वाले राक्षस को भगवान ने मार के ब्रजवासियों को वेद के नाम में कोई भक्ति से विचलित न करे, न धर्म के नाम में, न वेद के नाम में और न योग के नाम में। इन तीनों से भक्ति ऊपर है, धर्म से भी ऊपर है, योग से भी ऊपर है और वेद से भी ऊपर है। अब कथा आती है भगवान की वृंदावन से मथुरा जाने की। नारद जी ने जाके कंस को बोला कि वसुदेव के दोनों पुत्रों को आप ढूंढ रहे हो ना? वसुदेव के पुत्र नंद के घर में कृष्ण बलराम है बस। कंस ने अक्रूर को कहा ये रथ नया ले जाओ, कृष्ण और बलराम को या ले आओ, एक बड़ा धनुष का यज्ञ कर रहे हैं, नंद बाबा और सबको निमंत्रण देकर आओ। अक्रूर जी ने कहा, क्रूर कंस के पास दो बच्चों को लाके मरवाना है, काम तो बहुत बड़ा, लेकिन कृष्ण बलराम का दर्शन तो होगा। और यहां से नारद जी ने ब्रज में गैया चराते हुए कन्हैया को कहा, कन्हैया ब्रज का बहुत दही दूध मक्खन खा लिया, अब यशोदा और नंद को बहुत सुख दे दिया, अब वसुदेव और देवकी का भी जाके समाचार लो, और आज से चौथे दिन कंस को मैं मरा हुआ देखना चाहता हूं। इतना कह के नारद जी चले गए। काका अक्रूर आया, नंद बाबा ने स्वागत किया, रात को वहां रहा, सुबह कहा के हम आप सब हमारे साथ चलिए, कृष्ण बलराम को मैं रथ में ले चलता हूं, और बैलगाड़ियों के अंदर नंद बाबा ग्वाल बालों को लेके, गोपू को लेके और मथुरा की तरफ चले। आज न यशोदा मैया रो रही है, कन्हैया आज तक रात को घर से बाहर कभी नहीं रहे, पहली बार रात को बाहर रहने जा रहे हैं। मैया ने बहुत से पकवान बनाए, दो दिन का भोजन बनाया, कच्चा पक्का भोजन दिया, बोला कल जरूर बेटा वापस आना। मैया विदा किया, गोपियां रथ के सामने सो गई, बोला हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, हमारे प्राणनाथ को कहाँ तुम ले जा रहे हो, किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रखा है, तुम तो बहुत बड़े क्रूर हो, कहाँ ले जा रहे हो हमारे प्राणनाथ को। भगवान ने कहा परसों आ जाऊंगा, गोपियां चिंता मत करो। तो वहां उस गांव का नाम हो गया परसुआ, परसों आऊंगा। गोपियों को भगवान ने विदा किया। अब अक्रूर को दुख हो रहा है कि कहां मैं छोटे बालकों को, 11 साल के बालकों को कंस जैसे क्रूर राक्षस के पास मरवाने के लिए ले जा रहा हूं। फिर भगवान के मन में आया कि काका को विश्वास दिलाना चाहिए। जमुना जी के किनारे पहुंचे तो कहा, काका संध्या वंदन कर लो, जाओ स्नान कर लो। अक्रूर जी नीचे उतरा स्नान करने, डुबकी लगाए तो अंदर शेष सैया के ऊपर भगवान विष्णु बैठे हुए देखे, बाहर निकले तो कृष्ण बलराम रथ पे देखे, अंदर देखे तो शेष और नारायण अंदर बैठे। तीन बार दर्शन करने के बाद वापस आए तो कृष्ण ने कहा, काका कुछ आश्चर्य देखा? बोला, बेटा आपको देखने के बाद कोई आश्चर्य नहीं रहता है। अब ये जो जगह है इसको कहते हैं अक्रूर घाट, आज इसको अक्रूर घाट कहते हैं। इस सीमा से बाहर श्री कृष्ण नंद नंदन नहीं जाते, अदृश्य रूप से वृंदावन में रहते हैं और नित्य लीला करते हैं। यहां से वसुदेव कृष्ण अब कृष्ण के रूप में मथुरा चले गए, रात को मथुरा शाम को पहुंचे। अक्रूर ने कहा हमारे घर चलो। बोला, काका बाद में आएंगे, अब बाबा के पास जाएंगे। नंद बाबा के पास गए, दूध पी के सो गए। दूसरे दिन दोपहर को निकले हैं नगर देखने के लिए, मथुरा के सुंदर नगर का वर्णन है। ग्वाल बालों को लेके जा रहे हैं तो देखा एक रजक रंग कपड़ा रंगने वाला और धोबी गधों के ऊपर कपड़ा दाद के जा रहा है। कृष्ण के मन में आया कि हम तो अभी ग्वाल बाल हैं, गैया चराते हुए आए हैं, बड़े नगर में आए हैं, कपड़े नए पहनने चाहिए। रजक को कहा, सुनो सुनो कपड़े तो हमको दो, हम नए कपड़े पहनना चाहते हैं। धोबी ने कहा, हम मैं कंस का धोबी हूं, तुमको मृत्यु सामने नजर नहीं आती है? कंस के कपड़े लोगे मर नहीं जाओगे, कंस मार देगा। कृष्ण मुस्कुराए, देखा तो ग्वालों की तरफ और उल्टे हाथ को ऐसे दे मारा और धोबी का गर्दन दूर जाके गिरा और बाकी धोबी कपड़े छोड़ के गधे छोड़ के भाग गया। पूरे मथुरा में हल्ला हो गया, बिना हस्त तलवार के बिना छुरे के गर्दन काट देता है, पता नहीं कौन सा बालक आ गया है। आतंक फैला दिया, ऐसा आतंक फैल गया सारे धोबी और रजक मथुरा छोड़ के भाग गए। कपड़े वहां पड़े थे, कौन था ये धोबी? ये वो धोबी था जिसने रामचंद्र कि सीता के ऊपर आरोप लगाया था कि पराए घर में रह के आई है, मैं रामचंद्र थोड़ी हूं घर में रख लूंगा। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम था, धोबी को कुछ नहीं कहा, लेकिन कृष्ण ने कहा आज उधार उतार देनी है, इसका तो राम नाम सत हो गया। अब कपड़े थे बड़े कंस के, ये बालक थे छोटे, कपड़े कहां अल्टर कराने की जरूरत पड़ गई कि सुंदर कपड़े कैसे पहने। गए एक दर्जी के पास, वो दर्जी के पास कहा कि हम कारे कपड़े सुंदर करो। दर्जी ने श्री कृष्ण की नाप ले रहा है, सो रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है, कपड़ों के अस्त्र शस्त्र बनाए, कसों कपड़ों के आभूषण बनाए, क्योंकि कल उनको कुश्ती लड़नी है, और कोई सोने चांदी के आभूषण होंगे तो लग जाएंगे, कपड़ों के आभूषण सुंदर बना दिए, रो क्यों रहा है? बोला रामचंद्र के मैंने राज तिलक के कपड़े बनाए थे, लेकिन रामचंद्र वनवास चला गया तब से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आज सौभाग्य से मेरे को कृष्ण आपको कपड़े पहनाने का सौभाग्य मिला, अब नए कपड़े पहन लिए। चले गए सुधामा माली के घर, आज सारे दर्जी कृष्ण के पक्ष में हो गए। बोला हम जैसे गरीबों के घर में आते हैं, ये कृष्ण भगवान सारे दर्जी कृष्ण की तरफ हो गए। गए सुधामा माली के घर, सुधामा ने दोनों की पूजा की, कृष्ण बलराम की, ग्वाल बालों सबको एक एक माला पहनाई, कृष्ण के लिए सुंदर माला गूंथ के ली। भगवान ने कहा तेरे घर में लक्ष्मी का वास तो जीते जी रहेगा, और जब यहाँ से आओगे तो मेरे धाम आओगे, तेरे को ये आशीर्वाद है। अब माला ये कपड़े हो गए, माला हो गई, अब चंदन लगना चाहिए। कुब्जा चंदन लाके जा रही थी, ये कुब्जा पृथ्वी का अंश है जिसके ऊपर कंस के भार के कारण टेढ़ी हो गई, और ये सत्यभामा का विस्तार है और टेढ़ी है पृथ्वी, सत्यभामा पृथ्वी का अंश है, और पृथ्वी सत्यभामा का अंश है, भगवान की पत्नी है। कन्हैया ने कहा सुंदरी, अरे वो आश्चर्यचकित हुई, बोला सब तो मुझे चिढ़ाते हैं, बंदरी बंदरी, ये सुंदरी कौन कह रहा है? सुंदरी तुम ये चंदन अंगराग हमको लगाओगी? वो कहती है आप जैसा सुंदर लगाने को मिले तो हमारा सौभाग्य है। वैसे मैं कंस की बहुत सुंदर अंगराग लगाने वाली हूं, मेरा अंगराग कंस को बहुत पसंद है, लेकिन आज आपको लगाती हूं। कृष्ण को बहुत सुंदर चंदन लगाया, अंगराग लगाया, खुशबू लगाई, बलराम जी को लगाई। कृष्ण ने कहा इसको फल तत्काल देना चाहिए, अभी का अभी इसको फल देते हैं। कैसे फल देंगे? उसके पांव के ऊपर पांव रख के, चोटिया को पकड़ के, यहां से ठोड़ी को पकड़ा और पीठ के ऊपर दे मारा मुक्का, टेढ़ी एकदम सुंदरी हो गई, सीधी हो गई तत्काल। पूरे मथुरा में स्त्रियों ने हल्ला मचा दिया, कोई जरूरत नहीं है ब्यूटी पार्लर की, ये लड़का हाथ लगाने से सुंदर बना देता है, ऐसा कहां मिलेगा, बड़े सब सुंदर हो गए, सारी स्त्रियां मथुरा की कृष्ण के पक्ष में हो गई। और कुब्जा ने कृष्ण का पल्ला पकड़ लिया, बोला कहां जा रहे हो, मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो? वो प्रेम करने लग गई। कृष्ण ने कहा अरे तुम जैसे, हम तो अब वैसे ही हमारा कोई घर नहीं है, तुम जैसे तो हमारे लिए सुख का साधन हो, लेकिन फिर अब हमारे को काम है, फिर तुम्हारे घर आएंगे। उसको ऐसे कह के कृष्ण बलराम ग्वाल बालों को लेके वहां चले गए जहां धनुष रखा था, जिसमें कल जिसका कल यज्ञ होना था। सिपाहियों ने कहा अंदर मत जाओ, कृष्ण का मामा ने हमको बुलाया है, निमंत्रण देकर अंदर जाके यज्ञ के दो धनुष के दो टुकड़े कर दिए, धनुष तोड़ दिया, जिसका यज्ञ होना था वही तोड़ दिया, सिपाही आए सबको मार दिया, आतंक ऐसा फैलाया, कंस को पता लगा यज्ञ भी टूट, दो धनुष टूट गया, सिपाही मर गए। बाबा गए, कृष्ण बलराम जाके सो गए बाबा के पास ग्वाल वालों के साथ रात को सुख से। दूसरे दिन बहुत बड़ा रंग मंच लगा है, कंस को सारी रात नींद नहीं आई कि धनुष टूट गया, सिपाही मर गए। कल कृष्ण बलराम रंग मंच में आए तो बाहर कोवल या पीड़ हाथी को खड़ा कर देना, और महावत इसके पांव के नीचे कृष्ण बलराम को समाप्त कर देना, अंदर मत आने देना। कृष्ण बलराम स्नान कर रहे थे जमुना में, दंगल की आवाज कुश्ती के सुनाई दिए, ये जैसे आए तो हाथी वाला सामने खड़ा था, अंदर नहीं जाने देंगे। कृष्ण बोला मामा ने निमंत्रण भेजा है, हम तो विशेष वृंदावन से आए। हाथी को आगे उनके ऊपर, हाथी को कहा इनको मारने के लिए कहा, कृष्ण हाथी को पूछ से पकड़ के पीछे खींचा और उसके बाद छोड़ा, हाथी कृष्ण की ओर दौड़ा और कृष्ण नीचे गिरा, हाथी ने समझा मैं दांत मारता हूं, कृष्ण पलटी खा गया, दांत दोनों हाथी के जमीन में चले गए, ढीले पड़ गए। कृष्ण ने दोनों दांतों को उखाड़े और एक बलराम जी के कंधे पे और एक कृष्ण के कंधे पे कोलिया पीड़ को और उसके महावत को मार दिया और रंगमंच में कृष्ण प्रवेश किया। जैसे रंगमंच में कृष्ण प्रवेश किया, कंस कहता है कौन आ रहा है? महाराज कृष्ण बलराम है। बोला कंधे के ऊपर क्या है? बोला कुबलिया पीड़ के दांत, कुबलिया पीड़ मर गया। हे चाणूर मुष्टिक खल तोशल, जाओ जाओ इसको कुश्ती में पकड़ के मार दो, ऊपर मत आने देना। बड़े बड़े पहलवान चाणूर और मुष्टिक कहते हैं कृष्ण बलराम हमारे साथ कुश्ती करो। कृष्ण बलराम कहते हैं हम देखो छोटे कच्चे बच्चे, तुम कितने बड़े रेसलर पहलवान हो, हमारा कोई जोर थोड़ी बनता है। वो कहते हैं तुम बड़े छोटे बच्चे लगते हो, कहाँ गया बकासुर, कहाँ गया अगासुर, कहाँ गई पूतना, इतने सारे यहाँ से मामा ने भेजे, बड़े बड़े वीर खिलौने सब तुमने तोड़ दिए, तुम्हारे को हमसे कुश्ती करनी पड़ेगी। तब ऊपर बैठी हुई स्त्रियां कहती है, अन्याय हो रहा है महाराज, इतने छोटे बच्चों के साथ इतना बड़े भयानक कुश्ती वाले लड़ना ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, जहां धर्म नहीं है अधर्म चल रहा है। और ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया दे मार इसको, ऐसे कन्हैया अभी इसको मार देगा। ग्वाल बाल कन्हैया जय हो ऐसे करने लगे, लोगों का अपना अपना विचार ऊपर हो रहा है और यहाँ कुश्ती शुरू हुई। थोड़ी देर दो हाथ करने के बाद कृष्ण ने घुमा के चारों को नीचे पटका और प्राण निकल गए। बलराम जी ने मुष्टिक को मारा। फिर कृष्ण ने कहा, देखो मामा बहुत देर से इंतजार कर रहा है, मैं मामा का देखभाल करता हूँ, तब खल और तोशल से आप निपट लो। बलराम जी खल और तोशल को मारने लगे, कृष्ण जंप मार के सीधा मंच के ऊपर चढ़ गया। कंस उठ के खड़ा हो गया, तलवार निकाल ली, मामा ने तलवार निकाल ली, कंस ने बालों से पकड़ा और झटका देके मंच से नीचे गिराया और ऊपर कूद के उसकी छाती के ऊपर बैठ के मुक्का ऊपर किया और कंस का प्राण निकल गया। कंस निकुंदन भगवान श्री कृष्ण की। कंस के प्राण निकल गए, कंस के भाई आए, उसको बलराम जी ने मार दिया। अब तो ऊपर से ग्वाल बाल उतर आए, उसी मंच के ऊपर कृष्ण से कुश्ती खेलने लगे और कृष्ण को गिरा दिया। इतने बड़े रेसलरों को कृष्ण ने मार दिया और कृष्ण को ग्वाल बालों ने गिरा दिया, तो उधर ही वो कुश्ती करने आ गए। अब कृष्ण यहां से बलराम जी के साथ गया जेल के अंदर, महाराज उग्रसेन को आजाद किया, अपने माता वसुदेव और देवकी के पास गए। उन्होंने सूत की ग्रह से कृष्ण को रवाना किया था, देखा तक नहीं था। आज 11 साल के बाद उनको चतुर्भुज रूप याद आ गया जो उन्होंने देखा था। तो भगवान ने कहा, ये मेरे माता पिता हैं और ये प्रणाम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। कृष्ण कहता है, वो पुत्र जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है, जब उसमें सामर्थ्य है तो उसको पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। हम आपके पुत्र हैं, हम आपकी सेवा न कर सके, आपने इतना संकट इतनी देर में, उनके हृदय में पुत्र का मोह जागृत हो गया। और देवकी ने कृष्ण बलराम को गोद में ले लिया, स्तन में दूध आ गया, आंखों में आंसू आ गए, कृष्ण का अभिषेक हो गया। अब कृष्ण बलराम यहां से नंद बाबा के पास आए, कहा, नंद बाबा अभी आप वापस नंद गांव चले जाओ, हमको यहां थोड़ा समय हमारे इन स्वजनों का सुख देने के लिए रुकना पड़ेगा। कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति का पिता जरासंध आक्रमण करेगा और हमारे पास वृंदावन में तो लड़ने का कोई साधन नहीं है, इसलिए मथुरा हमको रुकना पड़ेगा। नंद बाबा के आंखों से आंसू और धरती से जमीन पांव से निकल गई, कृष्ण तुम्हारे बगैर मैं वापस कैसे जाऊं, ब्रजवासियों को क्या कहूंगा। कृष्ण बलराम का, जब आप याद करोगे मैं आ जाऊंगा बाबा। एक रूप से उनके साथ चले गए अदृश्य, एक रूप से वहां रह गए। जो भी हो, नंद बाबा बड़ा दुखी मन से जब नंद गांव पहुंचा तो यशोदा ने कहा, तुम जीवित कैसे आ गए, तेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए बगैर कृष्ण बलराम के। नंद बाबा कहते हैं, पिता तो एक दशरथ था, राम नहीं आया तो प्राण निकल गए। हम तो कृष्ण बलराम को छोड़ के जीवित इसलिए आए हैं, हम तो मर गए होते। यशोदा, मेरे प्राण निकलते तो तुम भी जीवित नहीं होती और ये ब्रजवासी मर जाते, और कृष्ण कह गया है कि मैं वापस आऊंगा। वो वापस आए और हमको नहीं देखेगा तो उसको दुख होगा, इसलिए उसके सुख के लिए हम रोज रोज मरेंगे लेकिन उसको दुखी नहीं होने देंगे। नंद बाबा बड़े दुखी मन से वहां पहुंचे हैं। और यहां वसुदेव कहते हैं, बच्चे अभी तक स्कूल भी नहीं गए, अभी तक कृष्ण क्या पढ़ाए कुछ भी नहीं, कुछ का खाना पढ़ाता नहीं है, ABCD कुछ नहीं आती, अभी तक कृष्ण को एक गणित आती है, एक ही गणित आती है, या पूरा दो या पूरा लो, हमको बीच का हिसाब ही नहीं आता है। अपने आप को देना है तो पूरा दे दो, हमको लेना है तो पूरा ले लो, बीच का हिसाब आता ही नहीं। अब कहा कि जरा पढ़ाना चाहिए, संस्कार होने चाहिए। कृष्ण बलराम को उज्जैन भेज दिया सांदीपनि मुनि के पास, 64 दोनों में 64 कलाएं सीख ली। जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो गुरु जी कहते हैं, ऐसे सामर्थ्य शिष्य से सामान्य दक्षिणा नहीं मांगनी चाहिए। गुरु माता से पूछा, क्या मांगे? बोला, हमारा पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था, कृष्ण हमारे पुत्र को वापस ला दो। कृष्ण बलराम समुद्र के अंदर गए, पांच जन्य शत्रु, एक असुर मिला उसको मारा, पांच जन्य शंख मिला, पुत्र नहीं मिला। संयमपुरी में गए, यमराज ने स्वागत किया कृष्ण बलराम का, बोला हमारे गुरु का पुत्र बोला कर्मों से यहाँ आया है, बोला हमारे आने के बाद सब कर्म समाते हैं, बच्चा वापस दे दो। बच्चे को ले आए, गुरु दक्षिणा में अपने गुरु का पुत्र वापस दिया सब विद्य, और गुरु ने आशीर्वाद दिया हमारी शिक्षा सदा आपके साथ रहेगी। कृष्ण बलराम वापस वृंदावन आए, जरासंध 21 अक्षौणी सेना लेकर आक्रमण करके आया मथुरा के ऊपर। यदुवंशी जो बाहर देशों में चले गए थे कंस के भय से, वो वापस आ गए और कृष्ण बलराम को देख के बूढ़े जवान हो गए, और आज यदुवंशियों की सेना ने जरासंध की सेना को समाप्त कर लिया, और बलराम जी ने जरासंध को बंदी बनाया और हल से कंध गर्दन को पकड़ा, मूसल से मारने लगे। कृष्ण बोलता है भैया हमारे मामा का ससुर है, मत मारो छोड़ दो। आंख मार के बोला मामे को मार दिया, मामे के ससुर को छोड़ दो। बोला हम कहां जाके बदमाशों को ढूंढेंगे, ये अपने आप ढूंढ ढूंढ के यहां लाएगा, हम मारते रहेंगे। जरासंध को बड़ी लज्जा आई, वो उत्तर दिशा में तपस्या करने जाने लगे। कुछ राजाओं ने कहा महाराज एक बार हारना कोई बड़ी बात है क्या, समय की बात है, हम जीतेंगे, हम आपके साथ हैं, चलो। 17 बार जरासंध आक्रमण करने के लिए 21 अक्षौणी सेना लेकर आया, 17, 18, 20 अक्षौणी जो भी, हर बार कृष्ण बलराम ने सबको मार के यदुवंशियों ने, और जरासंध को जीवित छोड़ दिया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को कहा यज्ञ करो, हमारी विजय का उत्सव मनाओ, इस बार हमने जीता तो आपको बड़ा पुरस्कार दे, और हारा तो आप सबका गर्दन काट देंगे, इतने ब्राह्मण रहते हो हमारी विजय का यज्ञ नहीं कर सकते। ब्राह्मण उसके आगे गाते हुए चल रहे, गो ब्राह्मणताय जगतताय गोविंदाय नमो नमः। यहां जरासंध की सेना ब्राह्मणों को लेकर आ रही है, भगवान ने कहा मैं तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आया हूं, इस बार अगर जरासंध ने हारा तो ब्राह्मणों को मार देगा, इसलिए इस बार हम रण छोड़ के भाग जाएंगे, रण छोड़ राय बन जाएंगे, ब्राह्मणों को मरने नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, देवताओं के शिल्पी को बुलाया, देवताओं के आर्किटेक्ट को बुलाया, विश्वकर्मा को कहा समुद्र के अंदर बहुत सुंदर नगरी का निर्माण करो, और ये सारे यदुवंशियों को योग माया के द्वारा वहां स्थापित कर दिया। तब दो भाई बच गए, उस वक्त काल यवन ने एक तरफ से आक्रमण किया, उसको ये वरदान था कि एक दिन यदुवंशी तुम्हारे आगे भागेंगे। कृष्ण अकेला उसके सामने चला गया बिना अस्त्र शस्त्र के, और काल यवन ने देखा और कृष्ण भागा और उसके पीछे भागा, और कृष्ण थोड़ी देर जाके रुके, वो पहुंचे तो और भाग जाए, उसको लगे कि पकड़ लूंगा, और भागता भागता धौलपुर के पास पहुंचा। कहां से भागा था, मथुरा से। धौलपुर पर तक जब पहुंचा तो कृष्ण एक गुफा में घुस गए, आज भी गुफा वहां धौलपुर में है। गुफा में जाके एक मुचकुंड नाम का राजा सोया हुआ था, उसके ऊपर अपना कपड़ा पीला डाल दिया, और कृष्ण अंदर छुप गए। काल यवन ने आके मुचकुंड को लात मारी के यहां आके सो गए हो। मुचकुंड ने आंख खोली, काल यवन भस्म हो गया और मर गया, क्योंकि मुचकुंड को देवताओं ने कहा था जो तेरी नींद खराब करेगा उसका शरीर भस्म हो जाएगा, भगवान ये जानते थे। और काल यवन भगवान ने कहा मेरे हाथ से मारने के योग्य नहीं है। अब भगवान यहां से वापस आए तो जरासंध की सेना आ पहुंची। आज भगवान ने कहा रण छोड़ राय बनते हैं, रण को छोड़ के भागते हैं, रण छोड़ राय का नाम से भगवान आज भी गुजरात में पूजे जाते हैं। भगवान आगे भागे, जरासंध सेना लेके पीछे भागा, जाके गिरनार पर्वत के ऊपर भगवान चढ़ गए। गिरनार पर्वत के ऊपर चढ़ गए, जरासंध ने पर्वत के चारों ओर से आग लगाई कि आप जल के मर जाएंगे, लेकिन भगवान पर्वत से कूदे और सीधे द्वारका पहुंच गए। यदुवंशी पहले द्वारका थे, भगवान जाके द्वारका पहुंच गए। आज भगवान की मथुरा की लीला यहां पूर्णा होती कि पहुंचती है, और द्वारका में पहले बलराम जी का विवाह होता है। रेवत महाराज ब्रह्मा जी से पूछने गए थे कि मेरी बेटी का विवाह कहां कराऊं। ब्रह्मा जी कोई गंधर्वों का गान सुन रहे थे, उसमें 2-4 मिनट लग गई, और जब उनसे पूछा कैसे पधारे महाराज रेवत, बोला मेरी बेटी के लिए ये राजा हैं, इनमें से किससे शादी करूं। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि धरती के ऊपर राजाओं का कुल ही खत्म हो गया, यहां के 10 मिनट तो वहां तो सदियां बीत गई, लेकिन इस वक्त इसका नित्य पति बलराम जी यदुवंश में है, उसके साथ इसका विवाह करा दो। बलराम जी से विवाह रेवती का हो गया, तो अब रुक्मणी के विवाह का प्रसंग आता है। विद्रभ देश अमरावती महाराष्ट्र में, उसकी राजधानी कोंडनीपुर, उसका राजा महाराज भीष्मक, वो तो खीर सागर जैसा है, और उसके घर में लक्ष्मी रूपा साक्षात रुक्मणी प्रकट हुई है। उसके चार भाई हैं, उसमें बड़ा भाई विष है रुक्मी, जैसे समुद्र से विष निकला था ना, रुक्मी विष है, कृष्ण से द्वेष करता है। रुक्मणी ने नारद आदि ऋषियों से कृष्ण की सुंदरता, मधुरता, सौशल्य और सुंदरशील सुभा का श्रवण किया था, देखा नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है, भगवान को देखने के बगैर सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है। रुक्मणी ने अपना हृदय भगवान को दे दिया, लेकिन रुक्मी कहता है, उसका पिता कहता है कृष्ण से विवाह करे हमें पसंद है, उसकी माँ कहती है, तीन भाई कहते हैं, रुक्मणी स्वयं कहती है कृष्ण से विवाह करना चाहिए, लेकिन रुक्मी कहता नहीं, मैं मेरी बहन का विवाह, बड़ा भाई हूं शिशुपाल, चेदी नरेश से कराऊंगा, दम घोष के पुत्र से। ये विवाह तय हो गया, विवाह में दो तीन दिन बचे। रुक्मणी ने एक 7 श्लोकों की चिट्ठी लिखी, इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, प्रेम के विवाह को गंधर्व विवाह बोलते हैं। चिट्ठी 7 श्लोकों की है, एक ब्राह्मण को कहा है कृष्ण को जाके ये हमारा संदेश दो। ब्राह्मण पहुंचा है, कृष्ण सोने के सिंहासन पे बैठा है सुधर्मा सभा में। ब्राह्मण को देख के कृष्ण उठ के आया, अपने आसन पे ब्राह्मण को बिठाया, सम्मान दिया, ब्राह्मण को भोजन आदि कराया, फिर पूछा कि आप इतनी दूर से आए हैं, आपके राज में ब्राह्मणों का सम्मान तो है, आप किसी काम से आए हो, अगर छुपाने जैसा ना हो तो बताओ। ब्राह्मण ने कहा महाराज ये चिट्ठी दी है रुक्मणी ने। भगवान ने चिट्ठी ली, कहा तुम ही पढ़ो पंडित जी। पंडित जी ने पढ़ा, रुक्मणी कहती है आपकी सुंदरता, आपकी मधुरता, आपके शील स्वभाव का मैंने जब से श्रवण किया है, मैंने मन संकल्प करके आपको अर्पण कर दिया। वैसे आपके समान इस संसार में न कोई गुण में है, न कोई शील में है, न कोई रूप में है, कौन विवाह के योग्य नव युवती कन्या आपको छोड़ के और किसी का वरण करेगी? और आप अगर कहें तो बस ये समझो कि आप आके मेरे को यहां से अपहरण करके ले जाओ, क्योंकि मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, विवाह में 2 दिन बचे। आप अगर समझो कि आपको मुझे उठाने में मेरे परिवार वालों को मारना पड़ेगा तो उसकी चिंता मत करो, मैं आपको रास्ता बताती हूं। विवाह वाले दिन सुबह सवेले कुछ ब्राह्मण स्त्रियों और सहेलियों के साथ एक शोभा यात्रा में हम देवी के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। उस वक्त मैं जब जाऊं तब आप देखते रहना, जब हम वहां वापस आऊं तब आप मेरा अपहरण कर लेना। अगर आप संग नहीं आए तो मेरे को 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तो मैं 100 जन्म लूंगी, लेकिन मैं आपको छोड़ के प्राण त्याग दूंगी और कोई विवाह नहीं करूंगी। 7 श्लोकों में रुक्मणी का ये पत्र है, और इसको सुनने के बाद कृष्ण ने ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण रुक्मणी से मुझे भी बहुत प्रेम है, मैं भी रात को रुक्मणी का चिंतन करता हूं। आप निश्चित समझो कि उन राजाओं के बीच से जैसे शेर गिदड़ों के बीच से अपना शिकार ले जाता है, ऐसे मैं रुक्मणी को लेकर आऊंगा। चलो, दारू को बुलाया, भगवान रथ के ऊपर चढ़े, ब्राह्मण को रथ पे चढ़ाया, रात रात में कोंडनीपुर आके पहुंच गए, द्वारका से कोंडनीपुर पहुंच गए। और बलराम जी ने सुबह देखा कि कृष्ण नहीं, ब्राह्मण नहीं, और ये चले गए हैं विदर्भ देश में, वहां हमारे बड़े बड़े शत्रु जरासंध, शिशुपाल, सल्व, दंडवकर, अकेले कृष्ण चले गए। एक वो बड़े बड़े वीरों को वहां लेकर यदुवंशियों को बलराम जी भी यहां आ गए। यहां घर में पूजा पाठ हो गया रुक्मणी के विवाह का, सब सुकन हो गए, हल्दी लगा दी गई, शिशुपाल की बारात भी आ गई, उनको भी रुका दिया गया। ये नंद ये जब आए कृष्ण बलराम और यदुवंशी, तो महाराज भीष्मक ने आदर दिया, इनको बड़े अच्छे शिविर में रुकवाया। अब शोभा यात्रा निकली है, सबने मीटिंग करके कहा देखो ये यदुवंशी आए हैं, कुछ जरूर गड़बड़ होगी, दोनों तरफ रास्ते पे घोड़ों पे हाथियों पे सब सैनिक खड़े रहो, कहीं से इनको आने का रास्ता मत देना। सब हाथी घोड़ों के ऊपर चढ़ के अपना बाण धनुष तलवार जो भी गदा उठा के खड़े हो गए। यहाँ सुंदर रुक्मणी ब्राह्मणियों के साथ सहेलियों के साथ देवी के मंदिर में गई, ब्राह्मणियों ने पूजा कराया, और ये कहती है कृष्ण पति के रूप में मुझे मिले देवी, मेरी ये इच्छा पूरी करो। और फिर प्रसाद मिला। जैसे रुक्मणी बाहर निकली है वापस, अपने उल्टे हाथ से थोड़े बाल आंखों से दूर किए हैं और एक नज़र देखना चाहती है कृष्ण कहाँ हैं। और उस वक्त कृष्ण को कोई कष्ट करना नहीं पड़ा, रुक्मणी के रूप को देखकर जो सैनिक घोड़े हाथी के ऊपर था ना, वो उसके सुंदर रूप से मूर्छित होकर जैसे पका हुआ फल नीचे से गिरता है, ऐसे हाथी घोड़े गधे से गिरने लगे, सारे ही बेहोश होकर मूर्छित होकर नीचे गिरे। रुक्मणी ने कृष्ण का काम आसान कर दिया, सारे सैनिकों के हथियार गिर गए और सारे मूर्छित होकर नीचे पड़ गए। उस वक्त सामने से कृष्ण का रथ दिखाई दिया, कृष्ण ने रुक्मणी को हाथ देकर ऊपर चढ़ाया। ये अपहरण के विवाह को कहते हैं राक्षसी विवाह। पहला गंधर्व विवाह, ये दूसरा राक्षसी विवाह हुआ। जैसे कृष्ण आगे बढ़ा, सारे उठे, अरे उठो उठो उठो, शिशुपाल की मंगेतर को ले गए। रुक्मणी कहती है अब क्या होगा? कृष्ण कहते हैं तुम चिंता मत करो, दाऊ जी इनको देख लेंगे। कृष्ण और रुक्मणी का रथ आगे चला। यदुवंशियों ने उठ के जैसे लड़ना शुरू किया, वो कहते हम बारात में भोजन करने आए थे, हम मरने थोड़ी आए थे, बाराती थोड़ी लड़ने के लिए आए। थोड़ी देर के बाद वो जाने लगे। जरासंध ने शिशुपाल को कहा अरे दुख मत करो भाई, मैं भी 17 बार हारा था, कोई बात नहीं, ले गया, तुम्हारे भाग में नहीं था, उसको समझाने लगा। तब तक रुक्मी आके कहता है सबके सामने, अगर मैं कृष्ण से अपनी बहन को वापस नहीं लाया मारकर, तो मैं वापस कौंडिन्यपुर नहीं आऊंगा। और ऐसे वो पीछे भागा है और कृष्ण को गालियां भी दे रहा है, बाण भी चला रहा है। कृष्ण ने रथ को रोका, उसका घोड़ा मार दिया, रथ को तोड़ दिया, धनुष काट दिया, तलवार लेके आगे जोड़ा, तलवार कृष्ण ने काट दी उसको पकड़ के, और रथ के खंभे के साथ द्रौपदी के दुपट्टे, सॉरी रुक्मणी के दुपट्टे से बांध दिया। रुक्मणी रोने लगी, मेरे भाई को क्या होगा, कृष्ण का कोई नहीं, बैठेगा आराम से। तब तक बलराम जी उनको हरा के वापस आए। बलराम जी ने देखा नई घर में आने वाली बहू को उसके भाई को बंधा हुआ सामने, साले को, तो दिखाने के लिए बड़े भाई है। कृष्ण को कहते हम यदुवंशियों का ऐसा थोड़ी है, रीति रिवाज है कि साले को बांधते हैं और इस तरीके से उसके आधे बाल एक तरफ के काट दिए, मूछ राइट साइड की और बाल लेफ्ट साइड के, ऐसा इसका हजामत कर दिए आपने, ये यदुवंशियों का तो कर्तव्य नहीं है, तुमने ठीक नहीं कहा है भैया। और फिर रुक्मणी को कहते हैं देखो क्षत्रिय धर्म कितना कठोर है, अपने भाई को मारना पड़ता है, अपने सगे साले को मारना पड़ता है, अरे साले को मारना क्या, उसका अपमान करना ही मरने के बराबर है। और फिर रुक्मणी को कहते हैं रुक्मणी तुम इतनी दुखी तो हो रही हो, यही तो तुम्हारा भाई है जो तुम्हारी इच्छा पूरी करने नहीं दे रहा था, यही तो चाह रहा था कि तुम्हारा विवाह कृष्ण से नहीं हो, और तू इसी के लिए रो रही हो। और उसके बाद रुक्मणी को छोड़ दिया, वो वहां से गया नहीं, उधर ही एक नगर अपना नया भोजकट नाम का बसाया, वापस गया नहीं। कृष्ण रुक्मणी को लेकर बलराम जी के साथ यदुवंशी वापस द्वारका आए। अब मुहूर्त निकाला, सब अपने संबंधियों को, पांडवों को संदेश भेजा, विदर्भ देश में संदेश भेजा, महाराज भीष्मक कन्यादान करने के लिए आए, सब जो यदुवंशियों के पक्ष के पांडव थे ये सब उधर विवाह में आए। और विवाह इतना बड़ा महान विवाह रुक्मणी और कृष्ण का हुआ कि ये तीसरा विधिवत विवाह हुआ। तो रुक्मणी और कृष्ण के तीन विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और विधिवत विवाह। इसके बाद आज सिर्फ कृष्ण के विवाह पूरे कर सकेंगे, हमारे पास इतना ही समय है, फिर अंतिम श्लोक पढ़ के कथा को पूरा करेंगे। इसके बाद सत्राजित यदुवंशियों का एक सरदार है, सूर्य का बड़ा भक्त है, सूर्य ने प्रसन्न होकर उसको एक मणि दे दिए, उसका नाम है समंतक मणि। वो मणि रोज सोना देती है किलोज में, मन एक मन से ज्यादा सोना देती है और मणि चमक रही है। सबने कहा ये सूर्य आ रहा है क्या? बोला सूर्य नहीं है, सत्राजित सूर्य का भक्त है। तो श्री कृष्ण ने कहा देखो इतना धन एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, ये धन राजकोष में दे दो। उसने बोला नहीं दूंगा, मेरा है, खत्म हो गई बात। सत्राजित का भाई प्रसेन उसका नाम था, मणि को गले में डाला, घोड़े के ऊपर चढ़ के जंगल में चला गया, वापस नहीं आया, मणि भी नहीं आई, भाई भी नहीं आया। द्वारका में कृष्ण के ऊपर आरोप लगा के इसने मणि को चुरवाया और परसिन को मरवाया। कृष्ण के ऊपर कलंक लगा। कृष्ण यदुवंशियों को साथ लेकर जंगल में गए, देखा परसिन मरा हुआ, घोड़ा मरा हुआ, मणि नहीं, शेर के पांव के निशान देखे। शेर के पांव के निशानों के साथ आगे गए तो रीछ के निशान देखे। शेर मरा हुआ देखा, रीछ के पांव के निशानों के साथ गए तो एक गुफा में जाना पड़ा। कृष्ण ने कहा आप गुफा के बाहर खड़े हो जाओ, मैं अंदर जाता हूं। कृष्ण उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। 29 दिन हो गए, यदुवंशी थक हार गए, वापस द्वारका में आए, पूजा की देवी की कि कृष्ण हमको वापस मिले। अंदर जामवंत को कृष्ण का, कृष्ण की भेंट जामवंत से हुई और जामवंत के यहां मणि पड़ी थी। कृष्ण मणि लेने लगा, जामवंत ने युद्ध किया और युद्ध में जामवंत 28 दिन 29वां दिन जब होने लगा, कहता मैं रामचंद्र के साथ बड़े बड़े वीरों के साथ युद्ध करके आया हूं, आज तक मैं थका नहीं हूं, आज मुझे थकान क्यों हो रही है, देख रहा है तो ये तो मेरा इष्ट साक्षात भगवान राम है। कृष्ण को पहचान गए, प्रणाम किया, बोला क्षमा करना, ये मणि ले जाओ लेकिन मेरी बेटी जामवती को भी आपको विवाह कर देता हूं। तो भगवान मणि के बहाने गए थे और जामवती के साथ दूसरा भगवान का विवाह हुआ और जहेज में मणि मिल गई, मणि वापस लेकर भगवान आए, मणि सत्राजित को वापस दे दी। भगवान ने अपना कलंक उतार दिया। सत्राजित को लज्जा आई कि मैंने भगवान के ऊपर आरोप लगाया, अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कराया, तो तीन विवाह भगवान के हो गए। भगवान श्री कृष्ण यहां दिल्ली में आए, द्वारका से महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में, और अर्जुन के साथ घूमने के चलिए जमुना के किनारे गए, एक सुंदर नव युवती को तपस्या करते हुए देखा। अर्जुन जाके इससे पूछो क्यों तपस्या कर रही है। अर्जुन ने कहा देवी तपस्या क्यों कर रही है। बोला भगवान कृष्ण से विवाह करने के लिए, उसी के अलावा और किसी से विवाह नहीं करूंगी। अर्जुन ने कहा कृष्ण ये तो आपसे विवाह करना चाहती है। कृष्ण बोला लेके आओ। रथ में बिठाया, हस्तिनापुर लाए, फिर गए द्वारका में विधिवत विवाह किया, ये चार विवाह हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण उज्जैन की राजकुमारी मित्रा विंदा, उसके भाई कृष्ण को देना नहीं चाहते थे, भगवान स्वयंवर से उसका अपहरण करके लाए। फिर मदर देश में लक्ष्मणा के साथ उसके पिता ने कहा 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को जो भी अपने वश में करेगा उसको मेरी कन्या दूंगा, कई राजा आए वश में न कर सके। कृष्ण का शर्त तो हम किसी की मानते नहीं है, लेकिन अब कहते हो तो 7, एक कृष्ण 1 से 7 बन गए, 7 बैलों को पकड़ लिया, बांध लिया और लक्ष्मणा को बहुत दहेज मिला, दहेज में सामान मिला, और राजा जो बैल नहीं पकड़ सके थे वो लड़ने के लिए आए, अर्जुन ने उन सबको मार के भगाया, ये भगवान का 5वां विवाह हुआ। फिर मदुर देश से सैब्या और मित्रावंदा, सैब्या, लक्ष्मणा, ये इनके साथ भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हो गई। इसको कहते हैं 8 भगवान की मुख्य पटरानी। अब भूमि का वाराहदेव से उत्तर उत्तम जो प्रकट हुआ पुत्र, उसका नाम था भौमासुर, उसको नरकासुर भी कहते। इंद्र एक दिन भगवान के पास आया, कहा श्री कृष्ण मेरी मां आदिति के कुनकानों के कुंडल, वरुण का छाता और देवताओं के खेल का ये स्थान भौमासुर ने कब्जे कर रखा है। तो भगवान सत्यभामा को साथ लेकर, क्योंकि किसका पुत्र है भौमासुर, और भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है, और सत्यभामा पृथ्वी उसके अंश है, तो जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी तब तक भौमासुर को नहीं मारेंगे। भौमासुर की राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर में, वो आसाम की तरफ है। श्री कृष्ण गरुड़ के ऊपर सत्यभामा को साथ ले गए और उसकी सुरक्षा इतनी थी कि पानी के बाहर पानी की खाई, फिर बिजली की तारे, फिर हवाई प्रबंध किया हुआ था। मूरा राक्षस था, उसको भगवान ने मारा, भगवान का नाम मुरारी हो गया, और फिर सब सुदर्शन चक्र से अग्नि को काट दिया और भगवान ने अंदर जाके भौमासुर का वध किया, उस वक्त पृथ्वी प्रकट हुई, भौमासुर की माँ। आदिति का कुंडल लाके दे दिया, वरुण का छाता दे दिया और कहा अब आप क्षमा करो और इसके पुत्र को आशीर्वाद दो। भगवान यहां से ये सारा सामान लेकर गरुड़ के ऊपर चढ़ के स्वर्ग लोक में गए, इंद्र को उसकी माँ के कुंडल दे दिए, वरुण को छाता दे दिया। इंद्र ने बड़ी भगवान की पूजा की। वापसी में एक पारिजात का पेड़, एक पुष्प को सत्यभामा ने पसंद किया। भगवान ने कहा एक पुष्प क्या, पूरा पेड़ ले चलते हैं। भगवान ने पेड़ उखाड़ा और इंद्र लड़ने के लिए आया, अभी पूजा की थी अब लड़ने के लिए आया। भगवान ने फिर इंद्र को परास्त किया, भगवान यहां से वो लौट के आए। तो ये भौमासुर के केद में 16,100 राजकुमारियां थी, उसने सबको बंदी बना के रखा था और वो कहता था एक यज्ञ करूंगा फिर इनसे विवाह करूंगा तब मैं पूजित हो जाऊंगा। लेकिन वो सब कन्याएं कहती हैं राजकुमारियां, कृष्ण अब ना हमारे परिवार वाले हमको स्वीकार करेंगे, ना कोई हमारे से विवाह करेगा, हम कहां जाएंगे। तत्कालीन समाज में भगवान ने क्रांति की कि जिसका कोई नहीं होता है उसको मैं स्वीकार करता हूं, सबको सुंदर रथों के ऊपर सुसज्जित श्रृंगार के साथ भेज दो द्वारका, मैं उधर जाकर सबके साथ विधिवत विवाह होऊंगा करूंगा। श्री कृष्ण 16,100 रूपों में एक से अनेक हो गए, सबके साथ विधिवत विवाह किया, सबके साथ महल बनाए, उनके अंदर रहने लगा। नारद जी एक बार ये देखने के लिए चले गए कि हर महल में कृष्ण क्या कर रहे। इसके बाद बहुत और अद्भुत कथाएं हैं लेकिन समय हमारे पास सीमित है। इसके बाद एक कथा सुदामा ब्राह्मण की ऐसे ही कर लेते हैं, उसमें भगवान अपने भक्तों का प्रालब्ध कर्म कैसे बदलता है। गरीब था सुदामा, गरीब था, सुशीला उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, मन शांत था, इंद्रियां वश में थी, वेद पढ़ा हुआ था, वो मांगने नहीं जाता था कहीं, अयाचक ब्राह्मण था, जो अपने आप आ जाए खा लो बस। एक दिन सुशीला ने, उसकी पत्नी ने कहा कि आपका मित्र द्वारकाधीश है, लोग तो मांगने वाले को कोई चीज देते हैं, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मांगने वाले को कुछ चीज देते हैं, कृष्ण तो अपने आप को दे देते हैं। सुदामा कहता है मांगने तो मेरे को जाना नहीं है लेकिन कृष्ण के दर्शन का तो एक अच्छा बहाना मिल गया, लेकिन मित्र है उसके पांव बास जाना है तो कुछ भेंट ले जानी चाहिए, खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ना, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यह नीति का शास्त्र है, तो कुछ तो लाओ। घर में तो कुछ नहीं था, चार घरों में गई और पोहा लाई, तंदूल, ये पोहा जिसको हम कहते चिप राइस, एक घर से लाल मिले, एक घर से पीले नहीं मिले, एक घर से मोटे मिले, एक घर से छोटे मिले, तो गरीबी का, सुदामे की गरीबी का इतिहास इन पोहाओं के अंदर लिखा हुआ था। एक कपड़े में बांध के दे दिया, सुदामा द्वारका के लिए चले, द्वारका के वैभव को देखा आश्चर्य लगा, और अपने मित्र के महल रुक्मणी के बाहर खड़े हैं। ब्राह्मण को दरबान की जरूरत नहीं है, कोई रोकना नहीं, राजा के घर में ब्राह्मण को कोई रोकता नहीं था, फिर भी दरबान ने पूछा महाराज कहाँ जाना है, बोला कृष्ण से मिलना है। दरबान ने कृष्ण को समाचार दिया, एक ब्राह्मण सुदामा नाम का, पांव में चंपल नहीं है, सर के ऊपर पगड़ी नहीं है, खड़ा है दरवाजे पे, रुक्मणी कृष्ण की सेवा कर रही थी। कृष्ण वहां से दौड़े और भागते हुए एक दरवाजे पे आए, सुदामा को गले लगा के कहा इतनी देर लगा दी मित्र आने में, कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सुदामे को लाकर कृष्ण ने सिंहासन के ऊपर बिठाया जिसके ऊपर स्वयं बैठे थे, और फिर नीचे बैठकर रुक्मणी को कहा पानी भर के आओ, इस ब्राह्मण का चरण धोना है। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सुदामे के चरण धोए, आ भगवान की आंखों से आंसू भी बह रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण चल के आया। भगवान ने उनको भोजन कराया, रात को उनके साथ साथ बैठ के बातें करने लगे कि कैसे हम अपने गुरु के आश्रम में साथ पढ़ते थे, कैसे गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए थे, एक बार रात को हम जंगल में रह गए, बरसात पड़ गई, सुबह गुरु हमको ढूंढते हुए आए थे, सुबह हुई। एक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए हास्य की कथा बताते हैं, अब जब सब रानियों को पता लगा कि रुक्मणी ने पूजा की है, ब्राह्मण की आशीर्वाद तो सब उसको मिल गई, तो सब रानियां पूजा की थाली में एक पेड़ा और कुछ फल फूल लेकर आई सुदामा की पूजा करने के लिए। एक आई ब्राह्मण देवता, ये खाओ फल, मुख में सीधा दिया, एक खाया, पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, बेचारे का गला सूख गया, कितने पेड़े खाएगा। बोला कृष्ण और कितनी है? बोला बाकी 16,100। अरे इतने पेड़े कहां जाएंगे? तो कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो ब्राह्मण, तुम मेरे को आशीर्वाद दे दो, ये सब संतुष्ट हो जाएंगे। कृष्ण ने तो सुदामा ने कहा तेरी सारी महेशियां 10 पुत्र के साथ पुत्रवती हो, एक एक पुत्री, और सब में से 10 पुत्र और एक पुत्री हुई, और तेरे घर का कभी सूतक न लगे, सूतक ही तेरे देश से बाहर रहे, इतना तुम्हारे घर में वैभव रहे, बाकी इतना। सुदामा ने उसके बाद मांगा नहीं, अभी तक दूसरा दिन हो गया सुदामा ने। कृष्ण ने कहा अरे मित्र, मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? भगवान को मांगना पड़ गया, सुदामे ने नहीं मांगा। मांगने वाला सुदामा होता तो भागवत में चरित्र ना आता। नहीं मांगा तो भगवान ने कहा मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामे को लजा आ रही है, 56 भोग क्या, यहाँ सुंदर महल बने हुए हैं और मेरे पास पोटली के अंदर वो पोहा और तंदुल है, लेकिन आज वो छुपा रहा है और कृष्ण उससे जबरदस्ती उसके बगल से निकाल के पोहा एक मुट्ठी भर के खाया और कहने लगा मैंने 56 भोग खाए हैं रुक्मणी के हाथ के, मैंने तो ब्रज में भी बहुत दही दूध मक्खन खाया है, लेकिन ये पोहा बहुत मीठा है, इसका रस बहुत अच्छा है। एक और मुट्ठी भरी, रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, लक्ष्मी है, कहती है ब्राह्मण का कर्जा कैसे उतारेंगे? अरे प्रसाद ब्राह्मण का हम सबको भी तो मिलना चाहिए ना, अगर ये ले लोगे तो हम कहां रहेंगे, ब्राह्मण को क्या दे सकते हैं हम? फिर भगवान ने सुदामा को विदा किया, कुछ नहीं दिया और रथ के ऊपर भी नहीं भेजा, चप्पल भी नहीं लेकर दिया। सुदामा पैदल द्वारका की गलियों से जा रहा है, ऐसे भगवान ने क्यों कहा किया? बोला इस ब्राह्मण के चरण पड़ेंगे तो द्वारका जुगा जुग वैभवशाली बनी रहेगी, ऐसा साधु कभी आ जाए तो बड़ा भाग्य होगा। सुदामा यहां से चला है, कहता अच्छा हुआ कृष्ण कुछ देता तो मेरे को लोभ लालच हो जाता, मोह हो जाता, लोग कहते थे मांगने गया था, अच्छा हुआ कुछ नहीं दिया, मेरी इज्जत रख दी, मेरी लाज रख दी, मित्र हो तो ऐसा हो। और सुदामा जब अपने घर पोरबंदर पहुंचा तो जगह को पहचान न पाया, अरे किसका गांव है? बोला सुदामे का घर है। तब तक अंदर से सुशीला 16 श्रृंगार करके अंदर आई, आरती उतारने लगी। सुदामा देख के कहता है ये कौन है? और सुदामा की पत्नी है। आप सुदामा ने कहा रे हे द्वारकाधीश, जैसे रात को बादल बरसात करता है, सुबह किसी को पता भी नहीं लगता है, बाहर निकलते हैं तो हरियाली पड़ी होती है, देखा किसी ने नहीं और दिया तुमने दिल खोल कर चप्पड़ फार के दिल दिया, लेकिन कृष्णा इसका भोग मैं नहीं करूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा, गोविंद जब देता है तो उसके समान और कोई नहीं दे सकता है, वो जीवन में प्रालबद्ध बदल रख देता है। एक वृकासुर की कथा है, वृकासुर नाम का एक असुर शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, उसको पूजा पाठ करके बड़ा राजी किया। शंकर जी जैसे प्रकट हुए, बोला क्या वरदान चाहिए वृकासुर? बोला जिसके सर के ऊपर हाथ रखूं वो मर जाए। शंकर ने कहा तथा अस्तु, बोले ना तो आशुतोष इच्छा से वरदान दे दिया। और वो मूर्ख का दिमाग इतना खराब हो गया, वहीं पार्वती को देखा और उसको देखते कहता है शंकर के माथे के ऊपर हाथ रख दूं ना, ये मर जाएगा तो पार्वती को भोगूंगा। वो शंकर के माथे के ऊपर हाथ रखने के लिए भागा, शंकर आगे वो पीछे, और दूर भागने के बाद भगवान ने देखा कि ये तो भोलेनाथ के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं बदमाश। एक ब्राह्मण बन के भगवान आगे आ गए और भोलेनाथ थोड़े कहीं छुप गए। भगवान ने कहा जा रहे हैं वृकासुर महाराज? बोला भोलेनाथ ने मेरे को वरदान दिया है जिसके सर के ऊपर हाथ रखूं सर फट जाए। भगवान हंसने लगे ब्राह्मण के रूप में, बोला दक्ष के श्राप के बाद भोलेनाथ का कोई वरदान काम नहीं करता है, तो अब वो है तू मुश्किल में पड़ जाएगा, तुम अपने सर के ऊपर हाथ रख के देखो हमारी बात नहीं, इस विश्वास होता है तो। ओ मुंह रखने का देखूं, ऊपर हाथ रखा अपने सर पे और मर गया। मर गया तो शंकर जी है वो जैसे पीछे देख रहे थे, बाहर निकल आए। भगवान ने कहा हे भोलेनाथ, इतने उधार भी नहीं हो के इसको ऐसे वरदान दो कि तुम्हें दौड़ना पड़े। अब और कथाएं, बहुत कथाएं हैं, लेकिन उनको नमस्कार करते हैं। आप आगे भी आपको जीवन में सुनने को मिलेंगी। ग्यारहवें स्कंद को मुक्ति का स्कंद कहते हैं। इस स्कंद में पहले भगवान श्री कृष्ण कितने त्यागी और वैरागी हैं, कितने विरक्त हैं, ये दिखाया गया है। यदुवंशियों को और पांडवों से धरती का भार पूरा उतारा। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास ब्रह्मा आदि देवता मिलने के लिए आए ऋषियों को लेकर। कहा श्री कृष्ण, आपको हमने धरती का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, वो तो उतर गया। अब आप अपनी इच्छा से अपने धाम जाओ तो हमारे लोगों को पवित्र करके हुए जाना। ये ऋषि यहां से पिंडार क्षेत्र एक द्वारका में, आप में से कोई नहीं गया होगा मुझे विश्वास है। हम एक बार 2 साल पहले उस जगह को ढूंढ के निकाला। द्वारका से 60 किलोमीटर पहले एक अंदर 20 किलोमीटर जाएंगे, पिंडार क्षेत्र है जहां दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। वहां पिंडार क्षेत्र में भी समुद्र है। द्वारका इतनी छोटी नहीं है जितनी आज आपको दिखती है। द्वारका का पुराना नाम है कुशस्थली, अनर्थ देश। द्वारका तो गोपियों ने नाम रखा है। भगवान ने एक बार गोपियों को योग और शक्ति से वहां बुला के एक महल के अंदर बिठा दिया। सुबह गोपियां उठी और कहती हैं, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, क्योंकि वृंदावन के अंदर तो सबके घरों में दरवाजे की जरूरत नहीं थी। तो द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, तो उसका नाम हो गया द्वारका। पहले उसका नाम अनर्थ देश था, भागवत में उसका नाम अनर्थ देश है और दूसरा नाम है कुशस्थली। अनर्थ महाराज के नाम से इसका देश अनर्थ देश नाम हुआ। सो मैं कहने ये जा रहा था कि द्वारका इतनी छोटी नहीं है। द्वारका पिंडार का क्षेत्र 60 किलोमीटर पहले से लेकर 100 किलोमीटर द्वारका से आगे माधवपुर जगह है जहां कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ है। ये 160 किलोमीटर समुद्र के अंदर पूरी द्वारका थी। जो समुद्र निगल गया, बस एक भगवान श्री कृष्ण के महल की जगह पड़ी है, बस और कुछ नहीं बेट द्वारका में। तो द्वारका इतनी छोटी नहीं थी। तो पिंडार के क्षेत्र में ये ऋषि स्नान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के बच्चे जामवती का बेटा सांबा बहुत सुंदर है, उसको लड़की के कपड़े पहनाए, पेट में कुछ कपड़ा डाला और कहा ऋषियों बताओ इसको लड़की होगी कि लड़का होगा। ऋषि ने कहा यदुवंश के हो, भगवान के वंश के हो, संतों से मजाक करना अच्छा नहीं। बोला महाराज इतना पता नहीं लगता है तपस्या से कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ऋषियों को क्रोध आया कि भगवान की इच्छा कोई होगी। बोला इसके होगा, इसके अंदर होगा मूसल लोहे का जिससे यदुवंश का नाश होगा। यह शराब दे दिया, बच्चे भयभीत होके पेट खोला तो अंदर से मूसल निकला। कृष्ण को नहीं बताया, उग्रसेन महाराज को बताया। उसने बोला पीस के समुद्र में डाल दो, समुद्र में डाल दिया। एक बड़ा टुकड़ा बच रहा वो भी डाल दिया। अब इसके बाद कथा आती है कि 5 अध्यायों में सबकी मुक्ति कैसे होती है। नारद जी द्वारका में आए, वहां उनको शराब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बार बार द्वारका में आते हैं। वसुदेव ने कहा कि हम भगवान हमारे पुत्र हैं लेकिन हमको मुक्ति का अभी तक पता नहीं, 3 जन्म हम दब ले चुके, आप हमको कोई उपदेश करो। तो नारद ने कहा मैं नव योगेंद्रों का उपदेश जो निमि महाराज को बताया आपको बताता हूं। हवीर कबीर अंतरक्ष पिपलायन कर भजन, ये नव योगेंद्र ऋषभ देव के जो पुत्र हैं, उन्होंने जो सामान्य मानव को मुक्ति देने का रास्ता बताया है कि सुख कैसे मिले, कर्मों के बंधन से कैसे छूटे और भगवान के अवतार कैसे होते हैं, कब होते हैं, कल युग में कौन सा अवतार आएगा, कैसे पहचाना जाएगा। कार भजन ने कहा कल युग में भगवान पीले रंग में कि कृष्ण होगा लेकिन कृष्ण जैसा सांवला रंग नहीं होगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, जगह जगह में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाएगा। चेतना महाप्रभु की भविष्यवाणी की, रामचंद्र के अवतार की भविष्यवाणी की है। राज लक्ष्मी का त्याग करके पत्नी के साथ वन में चला जाएगा, असुर रावण उसकी पत्नी का हरण करेगा, ऐसे सब बहुत सुंदर वर्णन है। ये भागवत धर्म की कथा कम से कम 10 दिन में पूरी होती। इसके बाद 24 अध्यायों में 24 तत्वों से मुक्त होने के लिए दत्तात्रेय भगवान अवधूत, जिसके 24 गुरु, वो ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को किया है। कहां किया है ये उपदेश? ये 1-2 अध्यायों में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्राह्मणों का श्राप भी द्वारका में प्रभाव नहीं दिखाएगा, तो भगवान ने कहा चलो तीर्थ यात्रा प्रभास क्षेत्र चलते हैं। प्रभास क्षेत्र सोमनाथ को कहते हैं, सोमनाथ जहां सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है उसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं। और वो भगवान शंकर का क्षेत्र है और प्रलय करना शंकर जी का काम है। यदुवंशी सब वहां चले गए, वहां गए, रात को चावल पानी में डाल के रखा, सुबह पिया, सबको नशा हो गया और एक दूसरे से लड़ने लगे और एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को मारने लगे। सब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गया। वो जो मूसल पीस के डाला था समुद्र के किनारे, इर्क घास के निकला इर्क घास, वो एक घास काटते जाए, एक दूसरे को मारते जाए और मरते जाए, भगवान रोके तो न रुके। यदुवंश सारे का विनाश हो गया। बलराम जी पाताल में चले गए, वो जगह आज भी प्रवास क्षेत्र में है जहां से बलराम पाताल गए। फिर भगवान श्री कृष्ण वीरावल गांव 6 किलोमीटर दूर सोमनाथ से एक वृक्ष के पीछे पीठ देकर बैठे, उल्टे सीधे पांव के ऊपर उल्टा पांव, उल्टे पांव के ऊपर सीधा पांव रखा, उनके पांव का तलवा बहुत लाल चमक रहा था और भृगु ऋषि जो भगवान के छाती के ऊपर लात मार के आए थे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे महान पूजने कौन है, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, क्रोध किया, शंकर जी को 2 शब्द कहे, त्रिशूल उठा लिया, विष्णु जी को छाती पे लात मारा तो विष्णु ने पांव पकड़ के कहा आपका चरण कोमल, मेरी छाती वज्र जैसी, ब्राह्मण आपको चोट तो नहीं लगी? वो भृगु लात मारने के कारण आज शिकारी बना है, उसने बाण चलाया, भगवान के चरण को बाण लगा है, और चबान लगने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया है। उसमें 24 अध्यायों में 24 गुरुओं में पृथ्वी पहला गुरु है, पृथ्वी के पृथ्वी सहनशील है, पापी का भी भार उठाती है, साधु का भी भार उठाती है, पृथ्वी के ऊपर वृक्ष होते हैं और पर्वत होते हैं जो सबका परोपकार करते हैं, तो पृथ्वी से मैंने सुखा के परोपकार करना चाहिए। ऐसे पृथ्वी से, जल से, आकाश से, वैशा से, कन्या से, 24 तत्व गुरुओं से कैसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, 24 तत्वों से मुक्त होने की बात है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं। 12वें स्कंद में पहले अध्याय में आता है कि क्षत्रिय राजाओं का राज पूरा हो जाएगा, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का राज आएगा, चाणक्य पंडित उसका मंत्री बनेगा, उसके बाद यवनों का राज आएगा और कश्मीर की तरफ से ये यवन आएंगे और फिर कलयुग का भार इतना बढ़ जाएगा धरती के ऊपर, भूमि गीत में कलयुग के कारण क्या क्या दोष होंगे। कलयुग के दोषों में लिखा है कि लड़के बड़े बाल रखेंगे और स्त्रियां बाल कटवाएंगी। दूसरा दोष लिखा है कि भाइयों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे लेकिन सालों को सर के ऊपर उठा के घूमेंगे। और फिर एक लिखा है कि पढ़े लिखे का कोई वैल्यू नहीं होगा और जो चापलूसी और चमचागिरी करेगा उसका भी काम चलेगा। अब मैं सीधी बात बताऊं आपको, स्कूल में जो पहले नंबर में आता है वो डॉक्टर या इंजीनियर बनता है कि नहीं, और जो सेकंड क्लास में आता है वो एमबीए करता है ना, और एमबीए वाला बनता है डायरेक्टर और फर्स्ट क्लास वालों को कंट्रोल करता है कि तेरी नौकरी यहां लगेगी, फर्स्ट क्लास वालों के ऊपर, सेकंड क्लास वाला ऊपर, थर्ड क्लास वाला नेता बनता है, पास तो होता नहीं, वो इन दोनों के ऊपर राज करता है, और जो फेल होता है वो गुंडा बनता है, इन तीनों के ऊपर राज करता है, और जो कभी स्कूल कॉलेज गया नहीं वो साधु बनता है, इन चारों को चलाता है। ये कलयुग का आपको देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पढ़ा लिखा है वो नीचे, जो अनपढ़ है वो ऊपर। कितने अनपढ़ थर्क साफ साधु है, बड़े बड़े मंत्री उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े होते, बड़ा आश्चर्य है ये, ये कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा कि कलयुग के अंदर और ईमानदारों को न्याय नहीं मिलेगा, पैसों से इंसाफ मिलेगा कलयुग के लिए, ऐसे लिखा है। और कलयुग के दुखों को सुनकर परीक्षित महाराज बहुत दुखी हो गया, कहा इन लोगों का कलयुग से बचने का कोई साधन है? तब सुखदेव महाराज ने कहा कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महागुण, कलयुग दोषों का सागर है लेकिन एक उसमें बहुत अच्छा गुण है। अरे जल्दी बताओ महाराज, मैं राजा हूं, 7 दिन पूरे हो रहे हैं, प्राण निकल जाएंगे, उससे पहले मैं वो काम कर लूं तो लोग अपने आप करेंगे, राजा करेगा तो प्रजा करेगी। तो सुखदेव महाराज की जीभा के ऊपर सरस्वती आ गई और सुखदेव महाराज ने कहा क्या एक गुण है, आप बोलिए, कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। अब सुखदेव महाराज ने सीधा कहा कृष्ण का कीर्तन करो, यह भी नहीं कहा ब्रह्म का कीर्तन करो, यह नहीं कहा परमात्मा का कीर्तन करो, कृष्ण का कीर्तन करो, क्या होगा, दुखों से मुक्त हो जाओगे। बोला फिर भगवान के धाम वृंदावन चले जाओगे, दुखों से मुक्त हो जाओ लेकिन भगवान के नाम धाम ना जाओ, तो जेल से बाहर निकलो लेकिन कोई मिलने वाला ना हो, घर ना हो, इससे अच्छा जेल में 4 दोस्त थे। मैं सच कह रहा हूं, एक जेल में प्रचार करने गए, एक माता जी थी, बोलती है मैं ये 50 लोगों का रोटी बनाती हूँ रोज सारी की स्त्रियों की, अब मेरे 14 साल पूरे हो गए, मुझे बोला जेल से निकलो, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे कहा कि पति का मैंने हत्या की नहीं की वो भगवान जानता है, लेकिन उधर जाऊंगा तो पति वाले मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, न मेरे पियर वाले, मेरे माता पिता वाले स्वीकार करेंगे, अब बाहर जाकूं तो इससे तो अच्छा है अंदर में बैठी हो। तो बाहर निकलने के बाद भी कोई मिलने वाला तो होना, मुक्ति तो बाहर निकलना है जेल से, उसके बाद भगवान के धाम जाना ये मुख्य है, तो परम ब्रजेत भगवान के धाम चले जाएंगे। उसके बाद मार्कंड ऋषि प्रलय देखना चाहता है, 3 ब्रह्मा जी के दिन तक जिया है, भगवान को कहा प्रलय दिखाओ, मार्कंड ऋषि के आश्रम में एकदम जल आ गया और जल के अंदर वो बहता हुआ चला गया और एक पीपल के पत्ते के ऊपर छोटे कृष्ण को देखा जो अपने पांव का अंगूठा पी रहा था, और उसको देख के और उसने सांस लिया, मार्कंडेय उसके पेट में चले गए, और फिर मार्कंडेय निकले तो देखा मैं आश्रम में बैठा हूं। 1 मिनट में प्रलय दिखाई और शंकर और पार्वती ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, उसने कहा भक्तों का संग मिले, उसके बाद पुराणों और उसके अंदर कितने श्लोक है उसका वर्णन है, और अब प्रार्थना करके 3 श्लोकों में पूर्ण आहुति को करते हैं। आज समापति है, उसका मतलब पूरा होना नहीं है, उसका मतलब है सम्यक प्राप्ति, जो हमने सुना है हमारे को अच्छी तरह से प्राप्त हो, हमारा जीवन सफल हो। आज जो भाग्यशाली रोज आ रहे हैं 2-4 उनमें से माताएं, 2-4 हमारे मित्र अपना अनुभव बता सकते हैं, और 25-50 लोग भगवान के नाम जपने का संकल्प करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, और कोई 1-2 भागवत ले जाकर आज पूर्ण आहुति पे भगवान को अपने में घर ले जा सकते हैं। उससे पहले ये श्लोक पढ़ो, कस्मै येन विभासितो अयम् अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुन्य कृष्णाय तदरूपिणा योगिन्द्राय तत्आत्मनाथ भगवतराताय कारुण्यतस् तशुद्धं विमलं विशोकं अमृतं सत्यं परं धीमहि। कहते हैं वही भागवत जो अतुलनीय है, अतुल ज्ञान प्रदीप, ज्ञान का सूर्य है, सूरज है, तदरूपेण भगवान के ही रूप से भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दिया, फिर नारदाय ब्रह्मा जी ने नारद को दिया है, मुन्य कृष्णाय उसने व्यास देव को दिया, तदरूपेण ऐसे ही भगवान के भाव से, भगवान के ही अवतार है दोनों, भगवान अवतार, ब्रह्मा अवतार, गुण अवतार, नारद अवतार, व्यास अवतार, तदरूपेण योगिंद्राय, योगिंद्र कहते हैं सुखदेव महाराज को, योगियों में इंद्र योगियों का राजा उसको दिया। तो आत्मनाथ भगवत राता है, भगवत राता है नाम है परीक्षित का। उसने परीक्षित को सुनाया, क्या सुनाया, कृपा करके कारुण्य तद शुद्धम बहुत शुद्ध पवित्र ज्ञान सुनाया, विमलम कोई उसमें मैल नहीं है, इसके अंदर कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा नहीं है, केवल भगवान को प्रेम प्राप्त करने का, विशोकम सारा दुख नाश करने वाला है, अमृतम ये अमृत है, सत्यम परम धीमही भगवान का दिव्य ज्ञान है। और फिर कहते हैं नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै व्यास चक्षसे विमोक्षसे। मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वासुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो सर्वत्र है सबका साक्षी है, जिन्होंने ये भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया, और जो भगवत धाम जाना चाहे इसका श्रवण करे। अब सुखदेव महाराज को प्रार्थना करते हैं, योगिंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्प दष्टं यो विष्णुरातं अमुमोच। योगिंद्र सुखदेव को नमस्कार करते हैं, जो ब्रह्म रूप है, जिसने संसार रूपी सर्प से के डसने से विष्णु रात को मुक्त किया, किसको, परीक्षित महाराज को मुक्त किया। अब भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नादस नाथस्त्वम् न यतः प्रभो। हे स्वामी हे मेरे नाथ, हमारे को जन्म जन्म के बाद आपके चरणों की भक्ति दीजिए। अब पूर्ण आहुति का श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्राणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। इसमें दो बातें हैं, जितना संसार का पाप है भगवान के नाम को साथ मिलकर गाने से नाश हो जाता है। नाम संकीर्तन, भगवान का नाम साथ मिलके घर में गाओ तो सारे पाप नाश हो जाएंगे। बोला पाप का फल दुख होता है, पाप करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। बोला दुख कैसे जाएगा, प्रणामो दुख शमनस, प्रणाम भगवान को करोगे माथा टेकोगे तो दुख चला जाएगा। किसको माथा टेके, तो लिखा है नमामि हरिम परम, हरिम को प्रणाम कर, हरि को प्रणाम करने से, कृष्ण को प्रणाम करने से, राम को प्रणाम करने से सब दुख चला जाता है। प्रणाम का मतलब माथा टेकना, माथा धरती के ऊपर, जैसे आपके पास स्टैम्प होती है उसमें सब उल्टे शब्द लिखे होते हैं, उल्टे होते हैं ना, उसको जैसे कागज पे मारते हैं सीधे हो जाता है ना, ऐसे यहाँ ललाट के ऊपर कुछ भी उल्टा लिखा हो ना, भगवान के सामने माथा टेको सीधा हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे।